धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों शुभ संध्या, आज रात्रि यहाँ इस आराधनालय में फिर से होना बहुत ही अच्छा है। अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के लिए फिर से बोलना, मुझे पक्का है कि हम सब उसके साथ प्रेम में हैं। या तो फिर यदि हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम यहाँ इस गर्म इमारत में आज रात्रि इस तरह भीड़ लगाए हुए नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ होने का यही उद्देश्य है कि हम उससे व्यक्त कर सकें कि हम उससे प्रेम करते हैं और हमारी प्रतीक्षाएं अधिक बढ़ जाती है जब हम उसके आगमन के समय के निकट होने के विषय में सोचते हैं। जैसा कि हम चिन्ह को प्रकट होते देख रहे हैं उसके आगमन के, हम उस महान घड़ी की राह देख रहे हैं और जब हम उसे देखेंगे। सप्ताह के उस रविवार से जब से मैं यहाँ था, कुछ और लोग उससे मिलने के लिए चले गए। एक श्रीमती फोर्ड थी, श्रीमती लेवी फोर्ड, एक बहुमूल्य महिला, वह 80 वर्ष की थी। उसका पति कुछ समय पहले ही इस संसार से चला गया। वह स्पेनिश अमेरिकी युद्ध का पुराना योद्धा था और मैंने अपनी जीवन कथा में उसके पुत्र के नाम का उल्लेख किया है। वही वो एक था जिसने मुझे वो सूट दिया था, आप जानते हैं, जो उसने पहले इसे पहना था। वह वो एक सूट, एक मैं सोचता हूँ यह एक लड़के का स्काउट सूट था, और वो जब मैं उसका वह वाला हिस्सा लेने गया था, उसमें केवल एक ही टांग का भाग बचा था। और आज रात्रि लॉयड का वही लड़का शायद यहाँ पर है, और मैंने उस दिन उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया था, और उसने मुझसे कहा, बोला, बिली मैं चाहता हूँ कि आप कुछ तो बोलो जिससे यह साबित हो सके कि मेरी माँ फिर से जी उठेगी। और प्रभु ने मुझे उसके लिए एक संदेश दिया उसी के अनुरूप सकारात्मक। जब बाइबल सारी प्रकृति, हर एक चीज जिसे परमेश्वर ने बनाया है, यही बोलती है कि वो फिर से जी उठेगी, तो फिर कौन इसके विरोध में बोल सकता है? देखा, परमेश्वर ऐसा कहता है, उसकी प्रकृति के द्वारा साबित होता है, ये उसके वचन के द्वारा साबित होता है, उसके जीवन के द्वारा साबित होता है, हर एक चीज उसे जी उठना ही है। वहाँ कोई जरिया नहीं है, कुछ भी, आकाश और धरती टल सकते हैं, लेकिन यह नहीं टलेगा, उसे फिर से आगे आना ही होगा। फिर उस दिन परसों एक प्रबंधक जो हमेशा मेरे साथ होता है, श्रीमान बैक्स्टर, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उन्होंने ठीक इसी मंच से बोला था, उसकी पत्नी अचानक से हृदय गति रुकने से मर गई थी और वह बिल्कुल टूट गया था और बहुत दुखी था। मुझे भरोसा है आप भाई बैक्स्टर को जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसे याद रखेंगे, क्योंकि वो हमारे भाइयों में से एक है और वो वैकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में रहता है, और अब वो पिछले कई वर्षों से मेरे साथ नहीं है। और मैंने सुना है कि उसकी पत्नी को एक प्रकार का नसों से संबंधी रोग या कुछ तो हो गया था, और तब अचानक से उसकी हृदय की गति रुक गई और वो चल बसी थी, और हम बस नहीं कह सकते कि किस समय बुलावा आ जाएगा। और तब जब वो बुलाता है तो हमें अवश्य ही तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि आज रात्रि हम यहाँ पर हैं। मैं वहाँ अध्ययन कर रहा था, मेरा मतलब ऑफिस में श्रीमान मूर से बात कर रहा था, उसने मुझे इस बात के लिए तैयार किया था। मैं उस धन्यवाद देने के दिन से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ उस धन्यवाद देने के दिन के लिए सभा करना चाह रहा था, उसके बाद शेव रिपोर्ट के लिए चला जाता। निश्चय ही मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगा, और अंत में उसने कहा, तो ठीक है, यदि आप अभी 3 सभाएं करें और उन 7 मोहरों को बाद में लें, तब आप हमें किसी तरह से एक दिन दे सकते हैं। तो अंत में हम उसे वह शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन देने जा रहे हैं, और अब मैंने उससे वादा किया है कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन, और ऐसा होगा, पेंटिकॉस्ट लुइजियाना में 50 वर्ष हो जाएंगे। धन्यवाद देने का दिन यह लुइजियाना में 50 वर्ष पहले उतरा था। अब कल सुबह एक तरह से हम जोर देने जा रहे हैं कि हरेक जिनके पास एक संडे स्कूल नहीं होता है, जहां आप जाते हैं, मैं देखता हूं हमारे बहुमूल्य भाई डॉन रुडेल यहां है, और मैं जानता हूं कि उनका सुबह संडे स्कूल है, और शायद यहां और भी सेवक लोग हैं जो यहां आस पड़ोस से हैं जिनका संडे स्कूल होता है। अब हम चाहते हैं कि यदि आपके पास खुद का संडे स्कूल है तो आप वहीं जाएं, लेकिन यदि आपके पास कोई संडे स्कूल नहीं है और आप हमारे साथ होना पसंद करते हैं, मैं सुबह को बोलना चाहता हूं और इसे एक ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा और एक सिद्ध मनुष्य के पूरे डील डॉल पर शिक्षा दूंगा और ब्लैक बोर्ड पर उसका चित्र बनाऊंगा और परमेश्वर की मांग दिखाऊंगा और कैसे हम उसके सिद्ध डील लॉल तक आ सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख एक सिद्ध मनुष्य के सिद्ध डील लॉल में। और तब कल रात्रि प्रभु ने चाहा तो मैं मेरा मार्गदर्शक के विषय पर बोलना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप में से जो नगर के बाहर से हैं और हम इन सभाओं को जल्दी आरंभ करने की कोशिश करना चाहेंगे, यदि मैंने अभी तक पास्टर से बात नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप संडे स्कूल जल्दी सुबह को आरंभ कर लेंगे और कल रात्रि यदि संभव हो कलीसिया को 6:30 बजे या ऐसे ही कुछ आरंभ कर देंगे, और इसलिए इससे लोगों को अवसर मिल सकेगा। सो यदि वो रुकना चाहते हैं तो हम हो सकता है 8:30 बजे छोड़ देंगे, और तब उनमें से कुछ, मैं आज एक महिला से मिला जो 3 या 4 घंटे कार चलाकर आई है लगभग। उसने कहा यदि हम 8 बजे या 8:30 बजे बाहर आ सकें तो वह घर लगभग 2:30 या 3 बजे अगली सुबह को पहुंच सकेगी। उसका पति काम पर जाता है, इसलिए जो भी हो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर समय को नष्ट नहीं करेंगे। तो आइए हम आज रात को बस कलीसिया में जल्दी आ जाएं, और हम कुछ भी नहीं करते हैं आप जानते हैं, और हमारे पास इस विषय में रीति रिवाज के होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर किसी रीति रिवाज में बंधा नहीं है, आप जानते हैं बाइबल। इसलिए हम आशा करते हैं आप सब जो यहाँ हैं और सभी जो आ सकते हैं। अब यदि आपकी अपनी खुद की सभाएं हों, याद रखें यह एक अंतर सांप्रदायिक आराधनालय है जहां लोग आते हैं, और अधिकतर हमारी भीड़ जो यहां जमा होती है बाहर के शहर से आते हैं। अब यदि यहां कोई अजनबी होता है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और जब मैं मंच पर आया और मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसे 10 लोगों को भी नहीं देखा जिन्हें मैं जानता हूँ। आप में से कितने लोग यहाँ जयपर्सन मेले नगर से बाहर के हैं, अपने हाथ ऊपर उठाएं। देखा 99%। देखा, ये बस मित्र हैं। आप में से यहाँ कितने लोग 100 मील से अधिक दूर रहते हैं, अपने हाथ उठाएं। 50% लोग 100 मील से अधिक दूर से हैं। कितने लोग यहाँ 200 मील से अधिक दूरी से आए हैं, अपने हाथ उठाएं। 300 मील से अधिक दूरी से आए हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। वहाँ देखो 400 मील से अधिक दूरी के, अपने हाथ को ऊपर उठाएं। वहाँ देखिए 500 मील से अधिक दूरी के हैं, वे अपने हाथ ऊपर उठाएं। वहाँ देखिए सभा के 1/3 से ज्यादा लोग 500 मील से अधिक दूरी से आए हैं। देखा, ये बस मित्र हैं जो यहाँ आसपास से एकत्र होते हैं, यहाँ जमा होने जा रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए आभारी हैं, और हम यहाँ आपकी सहायता के लिए हैं। हम यहाँ पर वो सब करने के लिए हैं जो हम आपके लिए कर सकते हैं। अब मैं वहाँ पीछे अभी पढ़ रहा था कुछ, तो एक पत्र को जो मेरे बेटे ने मुझे दिया, एक महिला का, जिसने यह कहा इस बार आना उसका 35वां चक्कर होगा। वो यहाँ प्रार्थना की आशा में आई है, 35 बार हो गए हैं। वो सैकड़ों मील गाड़ी चलाकर आई है, उसका 35वां दौरा है। और तब ध्यान रखना, वहाँ लगभग 600 के आसपास प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षा कर रहे हैं, संसार भर से, जो बैठकर आमने सामने बात करना चाह रहे हैं। आपने देखा, इसे थोड़ा मुश्किल बना देता है जब हम यहाँ बस इस विषय के लिए सोचते हैं। क्या ये बहुत अधिक नहीं है? हम बस ये सुन सकते हैं, देखिए ये सारे संसार में है, और इसलिए हम सोचता हूँ क्या वो महिला आज रात्रि यहाँ भवन में है? 35वां चक्कर, उसने एक पत्र लिखा है, वो कल यहाँ होगी। वो 35 बार आ चुकी है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई। मैं समझता हूँ वो यहाँ भवन में नहीं है, हो सकता है कि अंदर नहीं आ पाई है, लेकिन मैं उसका पत्र वहाँ पीछे पढ़ रहा था। अब मैंने हमेशा ही कोशिश की है जब मैं यहाँ आऊँ, पर जब मैं घर पर होता हूँ, किसी विषय पर बात करने के लिए ना केवल बातें ही करता रहूं, या कुछ ऐसा नहीं जिससे मैं लोगों को प्रसन्न करूं। मैंने उसी विषय में बोलने की कोशिश की है जो कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और लोगों की सहायता हो। आप समझे, सहायता के लिए जो कि हम सब कर सकें, इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस कलीसिया से संबंध रखते हैं, किस संप्रदाय से हैं, जिससे कि आपकी सहायता हो सके कि आप परमेश्वर के और नजदीक चल सकें। और हमारा यहाँ पर होने का यही कारण है, परमेश्वर के और नजदीक चल सकें। और जब हम आज पाते हैं ये बहुत देर हो चुकी है और प्रभु का आगमन निकट आ रहा है। मैंने आज अपनी पत्नी को बताया, यदि मैं बेदारी की सभा में नहीं जाता हूँ कहीं, तो मैं नाश हो जाऊंगा। मैं बस इसे सहन नहीं कर सकता, मैं, मेरे अंदर कुछ तो जल रहा है। ओह, हम अभी सभाओं की एक पूरी श्रृंखला से होकर आए हैं जहाँ हजारों लोग उपस्थित हो रहे थे, और इससे कोई मतलब नहीं यदि आपके यहाँ 2 या 3 लाख लोग हों, यदि वहाँ बेदारी न हो। तो यह ऐसे ही है जैसे कि हम केंटकी में कहा करते थे, एक लंबी खींचने वाली सभा। आप जानते हैं हम लंबी खींचने वाली सभाओं में जाते हैं जिसे हम कहते हैं, और हम एक बेदारी को चाहते हैं जहाँ प्रभु का आत्मा लोगों के ऊपर मंडराता हो, और लोग बचाए जाते हैं और महान चीजें परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो करने के लिए की जाती हैं। और अब प्रार्थनाओं की सभाओं में अक्सर हम आप देख सकते हैं कि हम यहाँ प्रार्थना की पंक्ति को क्यों नहीं रख सकते हैं। देखिए, ये इतनी भीड़ हो जाती है कि आप इसे नहीं कर सकते। देखा, लेकिन अधिकतर प्रार्थना पंक्ति में लोग जो आकर और वे ये पाते हैं कि प्रभु वास्तविक है और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु जरा सा भी नहीं बदला। जो वो पहले था वही आज है और हमेशा तक रहेगा। और बाइबल ने इब्रानियों 13:8 में कहा कि वो कल आज और सर्वदा एक सा है। और लोगों की सभाओं में जो उन दिनों में उसे सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, हो सकता है कि वे प्रार्थना पंक्ति में नहीं आते थे, लेकिन भरोसा करने के लिए उनके पास विश्वास होता होगा। और जैसे ही उनका विश्वास हमारे प्रभु को छूता होगा, तो प्रभु उनकी ओर फिरता है और घूमकर और लोगों को बताता है कि वहाँ उनके साथ कुछ तो गलत चीजें हैं जो उन्होंने की है, और उन लोगों के लिए कि वे जाएं और चंगे हो जाएं, या जाकर कुछ तो करें, कुछ तो सुधार करें, या ऐसा ही कुछ। हम कुएं पर की उस स्त्री के विषय में जानते हैं, और वो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, और ओह, बहुत से हैं अंधा बर्तमई कि उनके विश्वास ने उसे छू लिया, और आज रात वह अब भी हमारे अंगीकार करने का महायाजक है, और बस उतना ही महान है जितना वो हमेशा से रहा है। अब हमें अपने आप को उसका सेवक होने देना है। वह दाखलता है, वो जीवन का स्तोत्र है। हम डालियां हैं जो उस जीवन को प्राप्त करती हैं, और डालियां फल को लाती हैं, ना कि दाखलता। और अब मसीह अपनी कलीसिया के द्वारा कार्य करता है, और तब यदि हम अपने आप को इस प्रकार से सौंप दें जिससे कि पवित्र आत्मा हमारा पूर्ण नियंत्रण ले सके, हमारे विश्वास में जो मसीह में है वो वही काम करेगा, क्योंकि यह मसीह है। और यदि आप यहाँ हमारे साथ एक अजनबी हैं, अब अक्सर यहाँ के लोग इस आराधनालय में हमारे पास्टर यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं व्यवहारिक रूप से हर रात को, और आपने हमारे अनुग्रहकारी और प्रिय पास्टर भाई नेविल के द्वारा प्रार्थना करवाई है। एक मनुष्य जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है, भाई ऑर्मन नेविल और भाई डॉन रुडेल और दूसरे भाई लोग जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई जैक्सन, मैं समझता हूँ कि वो आसपास ही हैं, कहीं तो वो हमारी दूसरी सहयोगी कलीसिया से हैं, जो वहाँ हार्वर्ड पार्क में हैं। और इस बार जबकि यह बहुत भीड़ से भरा हुआ है, यदि आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करें, जो भी आपकी आवश्यकता है, और आप एक अजनबी हैं और मैं आपको नहीं जानता, आप केवल परमेश्वर से मांगें और देखें क्या वो कल आज और सर्वदा एक सा है या नहीं। देखिए, यदि वो नहीं बोल सकता ठीक, वो आपको जानता है, वो जानता है आपके साथ क्या परेशानी है। केवल एक बात आपको करनी है कि उसका विश्वास करें, और तब वो आपको एक साधन के लिए उपयोग करेगा और मुझे दूसरे के लिए। यीशु ने कहा संत यूहन्ना 14:7, वह जो मुझ पर विश्वास करता है वो काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। अब वह एक समर्पित हुआ बर्तन है। अब कल रात हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप वो बर्तन कैसे बन सकते हैं कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा आपके जरिए से काम कर सकता है। और सो देखिए, वो परमेश्वर था जो आग के खम्बे में था, उसके बाद उसने अपने पुत्र में वास किया मसीह यीशु। अब वो अपनी कलीसिया में है। एक बार वो पिता कहलाया था, उसके बाद पुत्र, अब पवित्र आत्मा। यह परमेश्वर है अपने आप को संसार के लिए प्रकट कर रहा है। एक ही जरिए से वह कलीसिया में आ सकता है कि पहले वह कलीसिया के लिए मरे ताकि इसे पवित्र करे, ताकि वो अपने आप को उसकी कलीसिया के द्वारा प्रकट कर सके। तब उसने संत यूहन्ना 15 में कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, देखा, और डालियों में लगते हैं फल। प्रभु आपको आशीष दे। और अब इससे पहले हम आज रात के पाठ के लिए जाएं, और मैं आपको अधिक देर तक रोकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग खड़े हुए हैं और एक उस दूसरे के स्थान को ले रहा है और फिर दूसरा व्यक्ति बैठता है इत्यादि। हम एक अनुमति पत्र लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि यहां 300 या 400 अधिक लोगों को सीट में बैठा सकें, लेकिन लगता है कि शहर की ओर से अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि हमारे पास बाहर गाड़ियों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। हमें इंडियाना पॉलिस से अनुमति पत्र मिल गया है, और तब शहर में हमारे पास गाड़ियों को खड़ा करने के लिए स्थान होना ही चाहिए। ओह, जब हम यहाँ 400 लोगों को बैठाते हैं, हमारे पास पर्याप्त स्थान होना ही चाहिए कि कार को बाहर खड़ा कर सकें, और ये कारों को खड़ा करने वाला स्थान असल में शहर का है। समझे कि वे हम यहाँ नगर की हमारी कलीसिया बस शहर की रेखा से लगभग एक फुट दूर है, और वास्तव में महामार के कारण यह यहाँ बना है। निश्चय ही आप में से कुछ लोग नवयुवक जो यहाँ है इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यह स्थान एक तालाब हुआ करता था। और मुझे याद है जब मैं एक लड़का था हम यहाँ तक गाड़ी से आया करते थे, और हमें खेत में जाना होता था, तालाब के आसपास जाते थे। उन्होंने ठीक वहाँ सड़क बना ली है, तालाब के चारों ओर सड़क बन गई है, और मैंने इस हिस्से को यहाँ खरीदा। ठीक यहाँ प्रार्थना करता था जहाँ प्रभु ने मुझे इस हिस्से को खरीदने के लिए बताया। लगभग 30 वर्ष पहले या 32 वर्ष पहले मैं सोचता हूँ ऐसा ही है। ठीक यहाँ पर और एक बहुत बड़ा दलदल था, और मेरे सिर के ऊपर तक घोड़ों की जंगली घास थी, और मैंने यह भाग $160 में खरीदा। यह कोने का भाग यहाँ पर है और कलीसिया को बनाया। अब प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ यदि इसे विषय कहा जाए तो कुछ के लिए इन टिप्पणियों पर कुछ संदर्भ को पढ़ूंगा। मैं आज रात श्रोतागण से बात करना चाहता हूँ इस विषय पर, किसी दूसरे का प्रभाव। और इससे पहले हम बोलें या वचन को पढ़ें, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और वचन के लेखक से बातें करें। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ और हमारे हृदय भी झुके हुए हैं उसके पवित्र आदर में, मैं सोचता हूँ यदि यहाँ कोई आज रात है उसके पास कोई निवेदन हो जो उनके हृदय में जल रहा है, वे केवल अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठा सकते हैं और अपनी प्रार्थना में कहें, प्रभु यीशु मुझे आवश्यकता है, आज रात मुझसे बोलिए, मुझे चंगा करें, मुझे मेरी आर्थिक आवश्यकता को देना, या वह जो कुछ भी है वो हमारी सारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लगभग 90% सभा के लोग, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आ रहे हैं। अब जैसा कि हम मिट्टी के इस छोटे से भवन को छोड़ते हैं जिसमें हम रहते हैं, इस छोटे से जहाज को जो जीवन के विशाल समुन्द्र में यात्रा कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चांद, सितारे, उस सौर मंडल से ऊपर जा रहे हैं, और अब विश्वास के द्वारा पिता के सिंहासन तक पहुँच रहे हैं। देखते हैं वहाँ बैठा हुआ है, उसके हाथ और उसके पैर छिदे हुए हैं, वह लहू बिचवाई का काम कर रहा है, जैसे कि हम अपने दानों को सोने की वेदी पर रखते हैं उसके सिंहासन के चारों ओर। हम पहले आपको यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने हमारे लिए विश्वास के द्वारा इन सब चीजों को संभव किया जो कि हम मांगने जा रहे हैं। आपने इन हाथों को देखा, आपको पता था कि इन लोगों के हृदय के नीचे क्या चीज धड़क रही है। प्रभु, मैं अपने विश्वास को बलिदान की महान परमेश्वर की सोने की वेदी पर रखता हूँ, जहाँ पर धूपदान को प्रतिदिन जलाया गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सुनेंगे और इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे पिता, उनके हृदय की इच्छा को उन्हें प्रदान करें। अब जैसा कि हम आज रात्रि यहाँ इन तीन सभाओं के लिए एकत्र हुए हैं, हम यहाँ आज रात्रि इस गर्म इमारत में किसी और उद्देश्य से इकट्ठे नहीं हुए, केवल आपके साथ नजदीक चलने के लिए, जानते हुए कि क्या करना है। प्रभु, क्या करना है? जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, वे जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नई शक्ति को प्राप्त करेंगे, वे उकाब की नाई पंखों के साथ ऊपर चढ़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। प्रभु, हमें सिखाएं कि हम कैसे प्रतीक्षा करें हमारे मांगने के पश्चात, और तब विश्वास करें जानने के लिए कि आपने सुना है, और आपके अपने अच्छे समय में आप हमारे उत्तर को सुनहर ही सीढ़ियों से नीचे भेजें, स्वर्ग के गलियारे से ठीक हमारे प्राण के अंदर, और हम वही पाएंगे जो हमने मांगा है, क्योंकि हम इसका विश्वास करते हैं। आज रात्रि सुनने के लिए हमारे कानों को पवित्र करें और हमारे हृदयों को स्वीकार करने के लिए, और होने पाए जब सभा समाप्त हो जाए, होने पाए हम उन इमाउस से आने वालों की तरह कह सकें, क्या जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न न हुई, क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। आज रात्रि मैं वचन का एक भाग पढ़ना चाहता हूँ जो यशाया की पुस्तक में मिलता है। आने वाले कल पक्का करें, यदि आपके पास एक कागज होगा, मैं चाहता हूँ कि आप, मैं यहाँ एक चार्ट लाने वाला हूँ या एक ब्लैक बोर्ड, उस पर किसी प्रकार के चित्र को बनाने के लिए विषय, और मैं सोचता हूँ कि आप इसे कागज पर नकल उतार लें, यदि आप हो सके तो, क्योंकि आप घर पहुँचने के बाद इसका अध्ययन कर सकते हैं। यशाया का छठवां अध्याय मैं इस अध्याय में से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूँ कि आज रात के लिए संदर्भ को निकाल सकूं। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखा, बहुत ही ऊंचे पर, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, प्रत्येक के छह छह पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढापे हुए थे और दो से अपने पांव को और दो से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर और कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से मंदिर की देवरियों की नीवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय मुझ पर, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने राजा सेनाओं के यहोवा को देखा है। तब एक सराप उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक जलता हुआ कोयला था जिसे उसने वेदी पर से चिमटे के साथ लिया था, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप शुद्ध हो गया। मैंने प्रभु की इस आवाज को भी सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह पूरी तरह से एक वचन है। जब हम इसे सोचते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? जब हम यशाया के इस दर्शन का अध्ययन करते हैं, मैंने यशाया को हमेशा ही पसंद किया है। वो प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से एक था। यशाया ने पूरी बाइबल लिखी। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और यशाया ने 66 अध्याय लिखे। उसने सृष्टि के आरंभ से शुरू किया और पुस्तक के मध्य में वो नया नियम को लाता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और 56वें और 60वें अध्याय में वो महान सहशताब्दी में समाप्त करता है। उत्पत्ति नए नियम में से होते हुए प्रकाशित वाक्य के अंदर यह यशाया महान व्यक्ति था, अंत में मृत्यु दंड के तहत शहीद के रूप में मरा। बाइबल का हरेक आत्मा से भरा व्यक्ति मारा गया, यह संघीय सरकार के द्वारा सताया गया। हर एक जन जिसके विषय में आप सोच सकते हैं, मूसा, इब्रानी बच्चे और दानियल और यशाया, यशाया को आरे से टुकड़े टुकड़े किया गया, और आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रेरितों में से हर एक जन, स्वयं यीशु, सभी मृत्यु दंड के तहत मरे या संघीय सरकार के द्वारा सजा दी गई। और जिस तरह से चीजें ढेर हो रही है, उसके अनुसार वहाँ और भी गवाहियाँ होने जा रही है इन दिनों में से एक दिन। यदि वहाँ कभी ऐसा समय रहा है कि जिसमें हमें अवश्य ही एक साथ जुड़े रहना चाहिए, तो वो अब है। मैं समझता हूँ आपने उस सभा के विषय में सुना है जो रोम में हो रही है, और हमारे यहाँ उनके यहाँ वहाँ पर एक अच्छा समय बिता रहे हैं, और वे एक बेदारी को आरंभ करने जा रहे हैं। निश्चय ही यह बेदारी समस्त संसार में होगी। इस विषय पर वापस, हम इसे 7 मोहरों में लेंगे, प्रभावित होने वाले इस विषय के लिए। राजा उज्जियाह एक चरवाहा लड़का था, वो बड़ा हो गया था और उसे घर से बाहर रहना अच्छा लगता था, और यशाया की भविष्यवाणी के दिनों में उसने राज्य किया। यशाया ने दूसरे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक से सीखा हुआ था, और मैं विश्वास करता हूँ कि वह जकर्याह था जिसके द्वारा यशाया को समझ मिली, जो एक भविष्यवक्ता था जब यशाया दृश्य पर आया, और यशाया को बुलाया गया था, और वह एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता मनुष्यों द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं, भविष्यवक्ता जन्म से ही भविष्यवक्ता होते हैं। अब भविष्यवाणी का एक दान होता है जो कि कलीसिया में आता है, जिससे लोग भविष्यवाणी को करते हैं। मसीह की देह के बहुत से सदस्य यह कर सकते हैं, यह प्रेरणा के नीचे होता है। लेकिन कलीसिया में भविष्यता को परमेश्वर के द्वारा रखा जाता है, जो भविष्यता के दान के लिए पहले से ठहराया हुआ होता है, या भविष्यता होने का एक दान, ना कि एक भविष्यवाणी करने का। अब हम पाते हैं इस नव युवक ने सिंहासन को प्राप्त कर लिया। यदि आप कुछ वचन को लिखना चाहते हैं, तो ये दूसरे इतिहास का 26वां अध्याय है। आप पढ़ सकते हैं जहां यह बताया गया है कि राजा उज्जियाह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात AMAZIAH अमस्याह उसके मरने के पश्चात एक धर्मी मनुष्य होते हुए और वो प्रभु से फिर गया था और अपने ही लोगों के द्वारा मारा गया। उज्जियाह ने उसका स्थान लिया, मेरा मतलब एक राजा के रूप में उसका स्थान लिया, और वह सिंहासन पर बैठा था और 16 वर्ष की आयु में अभिषिक्त किया गया। वो बस एक लड़का ही था, लेकिन वो राजा होने के लिए पंक्ति में था। यद्यपि वो बस एक लड़का ही था और उसने अच्छे काम किए। बाइबल हमें बताती है कि उसका एक धर्मी पिता और एक धर्मी माता थी, और वह कुछ भी और नहीं हो सकता था मुश्किल से ऐसे प्रभाव के साथ एक धर्मी लड़का होने के अलावा, क्योंकि उसके सामने हर समय इसी बात को रखा गया था। आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ, हर एक के पास अपना अपना विचार होता है, लेकिन सबसे महान में से एक और मेरी राय में सबसे महान राष्ट्रपति जो इस राष्ट्र में हमारे पास कभी हुआ था वो अब्राहम लिंकन था। अब इसलिए नहीं क्योंकि वो एक रिपब्लिकन था, लेकिन इसलिए वो वही था जो वो था, एक धर्मी मनुष्य, और उसका पालन पोषण हुआ था, और वह परमेश्वर की सेवा के लिए, और उसने कहा यदि कोई ऐसी चीज है जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, उसने कहा या मेरा जीवन जिसके द्वारा प्रभावित हुआ, वो मेरी धर्मी माँ थी जिसने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और यह ज्ञात कराया कि यीशु मेरा उद्धार करता है। ओह जो आप हैं वही आपका परिवार होता है। आप अपने बालक को एक विशेष वातावरण में पालन पोषण करके बड़ा करें, इससे 98% की अधिक संभावना हो जाती है कि वो सही सही चलेगा, उसकी तुलना में यदि आप उसका गलत तरीके से पालन पोषण करें। बालक का उसी प्रकार से पालन पोषण करें जिसमें उसे चलना चाहिए, और जब वो बड़ा हो जाए तो वह उससे नहीं हटेगा। सही से पालन पोषण करें, अपने बच्चों को सही कार्य करने की शिक्षा दीजिए, ईमानदार होने की, खरा बनना और निष्पक्ष रहना सिखाएं, तब भी जब वे स्कूल में हो। और बहुत सी बार बालक में एक दूसरे की नकल मारने की प्रवृत्ति होती है और स्कूल में वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं सोचता हूँ यदि आप बस इसे अपनी खुद की मेहनत से कर लेते हैं तो यह कुछ तो ऐसा होता है कि आप अच्छे परीक्षा की रिपोर्ट के लिए सराहना को पा सकते हैं। आप जानते हैं यदि अगले दिन आपकी परीक्षा होने जा रही है, बजाय इसके कि सारी रात इधर उधर भागें, अगले दिन सुबह उठकर और सोचते हैं ठीक है मैं फलाना फलाना के पास बैठूंगा, वे होशियार हैं और वे मैं उनकी नकल कर लूंगा। यदि आप बस इससे पहले कि आपके पिता आएं, आप नाश्ते की मेज पर धन्यवाद करें, यदि केवल आप यह कहें पिताजी मुझे प्रार्थना में याद रखें, आज मेरी रसायन की परीक्षा है या ये जो भी है, तब आप जब आप प्रार्थना करते हैं पिताजी कहते हैं परमेश्वर जॉन मैरी को आज उनकी परीक्षा में आशीषित करें, मैं आपको बताता हूँ यह धारा को बदल देगा। याद रखें हम वही पा सकते हैं जो हम चाहते हैं यदि हम उससे विश्वास से मांगेंगे, विश्वास करते हुए। यीशु ने कहा जो विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें संभव है। आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप मांगते नहीं, और आप मांगते नहीं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। उसने कहा बहुतायत से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं ये पसंद करता हूँ, हमारी शिक्षा सही है, सही बात को कहें, सही चीज को करें, सही बात को सोचें, हमेशा ही सही बात को सोचें। मेरे पास एक छोटी कहावत है, सही करें यह परमेश्वर के प्रति आपका कर्तव्य है, सही सोचें यह आपका स्वयं के प्रति कर्तव्य है, और तब आप अवश्य ही सही परिणाम के साथ बाहर आएंगे। आप एक ही समय में पूर्व और पश्चिम में नहीं जा सकते, ना ही आप एक ही समय में सही और गलत कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप कितना भी सोचें कि आप दूसरी ओर जा रहे हैं, यदि आप सीधे पश्चिम की ओर यात्रा नहीं कर रहे हैं, आप पूर्व में नहीं जा रहे हैं यदि आप पश्चिम में जा रहे हैं। इसलिए यह युवा राजा अपने पिता से प्रभावित हुआ था जब वो एक युवा पुरुष था और इज़राइल को परमेश्वर के नियम को सिखाया और तब अचानक से वह अपने अंतिम दिनों में मुड़ गया और परमेश्वर के विरुद्ध सिखाया और उसके अपने लोग व अपने ही लोगों के द्वारा घात किया गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि यह इस विषय में उज़िया के लिए एक बड़ी शिक्षा रही होगी। लेकिन हम पाते हैं कि जब उज़िया ने सिंहासन संभाला कि वो उस मार्ग में बढ़ने लगा जिस मार्ग में उसका पिता बढ़ा, परमेश्वर की बातों को वापस लाते हुए इज़राइल को परमेश्वर की आराधना पर वापस लाया। उसने अपने आप को दृढ़ किया और मैं हमेशा उसके युवा दिनों के लिए आभारी होना चाहता हूँ क्योंकि उसने कभी भी राजनीति का खेल नहीं खेला। भले ही राजनीति शायद उसके विरोध में हो लेकिन तब भी वो ठीक परमेश्वर की रेखा पर दृढ़ता से बना रहा और इसने इस छोटे से युवा भविष्यता को रोमांचित कर दिया, इसलिए इतना तक कि वो एक नायक बन गया। वो यशाया भविष्यता के लिए एक उदाहरण था और यशाया उसके साथ रहने को किले में गया, राजा के महल में। उसने उसे अंदर बुलाया, वो यशाया को पसंद करता था। यशाया भी युवा ही था और वे दोनों आपस में पक्के मित्र थे और किस तरह से वो राजा जब वो वहाँ बाहर जाता और वे कुछ राजनीतिज्ञ मनुष्य अंदर आते और कहते हमें अवश्य ही ऐसा और ऐसा करना चाहिए। राजा उज़िया ने पहले प्रभु की ओर रुख किया, प्रभु क्या ये आपकी इच्छा है कि हम इसे इस प्रकार से करें? परमेश्वर हमें इस प्रकार का राष्ट्रपति दे, केवल यही नहीं लेकिन हमें प्रचारक लोगों को दे। पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और तो बाकी की दूसरी चीजें मिल जाएंगी। यह अवश्य ही एक बड़ा प्रभाव रहा होगा क्योंकि यशाया ने उससे प्रेम किया क्योंकि उसने देखा कि वह एक महान पुरुष है और वह परमेश्वर के लिए दृढ़ता से और मजबूत खड़ा है। और आप जानते हैं प्रत्येक बार जिन दिनों में हम रहते हैं उन चीजों में जो हम करते हैं, याद रखें लोग केवल पास्टर को ही नहीं देखते जिस तरह से वो जीता है, वे कलीसिया के लोगों को भी देखते हैं। ओह यह बहुत ही बुरा है जब हम कलीसिया के लिए सोचते हैं। कभी कभी यदि पास्टर किसी तरह के संगठन या संस्था से जुड़ा हुआ हो और यह संगठन उसे किसी एक कलीसिया में भेजता है और कभी कभी उस संगठन के द्वारा पास्टर का हाथ बंधा हुआ होता है और वह छोटा सा व्यक्ति प्रभु की सेवा करना चाहता है। वो सोचता है उसे सिखाया गया था कि केवल एक ही तरीके से वो इसे कर सकता है, अपने संगठन की सेवा करने के द्वारा। और यदि वह उठकर और जो वचन कहता है उसे प्रचार करे तो कलीसिया उसके विरुद्ध वोट देकर बाहर कर देगी और तब वो डर जाता है कि उसके पास सुसमाचार प्रचार करने का कोई अवसर नहीं होगा। ओह आज हमें पुलपिट पर किसकी आवश्यकता है? वो है उज़िया जैसे मनुष्य की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कलीसिया की क्या राजनीति थी या किसी भी और चीज की राजनीति, उसने परमेश्वर की ओर से मिले हुए कार्य को किया। अंत तक वो रुका रहता जब तक उसे यहोवा यो कहता है वाला वचन नहीं मिल जाता। उसके बाद उसने उसे किया। छोटा सा वह छोटा भविष्यवक्ता, लगभग उसी की आयु का युवा व्यक्ति उसके साथ मंदिर में, वे एक साथ जाते हैं और प्रार्थना करते, इसमें कोई संदेह नहीं, और वे प्रभु की इच्छा को पूछते हैं और तब बाइबल की व्यवस्था से तुलना करते। फिर यदि वह सही होता है तो उज़िया इसे पारित कर देता था, यदि ये सही नहीं होता है तो वो राजनीति पर इसके लिए दोषी ठहराता था। परमेश्वर हमें ऐसे ही लोग और देना, और इस बात ने यशाया को रोमांचित कर दिया क्योंकि वह जन्म से ही भविष्यता था और उज़िया यशाया के लिए एक नायक बन गया। आप देखिए परमेश्वर के लिए उसके स्थिर खड़े होने के कारण वह धर्मियों की दृष्टि में नायक बन गया था और हो सकता है वहाँ बहुत से धर्मी ना हो समझे, लेकिन हम जो चीज करना चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए मायने रखे, कोई तो आपकी ओर देख रहा है। उस दिन मैं किसी के पीछे नजर रखे हुए था, कोई तो एक पड़ोस में उनके यहाँ एक बड़ी सांप्रदायिक कलीसिया की यहाँ पर एक बड़े रॉक एंड रोल के नाच गाने की पार्टी थी और वे सुबह लगभग 1 बजे तक नाच रहे थे और वे किसी व्यक्ति को चिढ़ा रहे थे जो आराधनालय में आता है और कहा कि वे पवित्र शोर मचाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर आए क्योंकि हमारी कोई संप्रदाय नहीं है। ओह, इससे मुझे एक मौका मिल गया। आप बस लगभग कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन बात ऐसी है, अब वे लोग कोई संदेह नहीं, वह युवा महिला जिसने ऐसी टिप्पणी को किया, काश वो केवल यह जानती कि सच्चाई क्या है। पिछले कुछ सप्ताहों में मैं पहाड़ों में था और बहुत दूर, जब मैं वहाँ से घर वापस आ रहा था, हम वापस गए मैं और परिवार की थोड़ा आराम करें, जहाँ के लिए हम फिर से अगले सप्ताह जा रहे हैं यदि प्रभु ने चाहा। और तब मैंने वहाँ एक रात को एक दर्शन देखा और ये एक प्यारी सी सुंदर स्त्री थी, ऐसा दिखाई दिया, युवा स्त्री दौड़ रही थी, उसका हाथ यहाँ पास में था और वह दिल के दौरे से मर रही थी, एक सुंदर स्त्री, और वह गिरी और मर गई। और प्रभु के दूत ने कहा, अब जब तुम इसके बारे में सुनो, याद रखना वे यह कहेंगे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन वह दिल के दौरे से मरी है और ये लगभग 4 बजे है, इसलिए तुम बस कहना कि 4 बजे हैं। और तब वह मुझे छोड़कर चला गया और मैंने परिवार को नहीं जगाया। छोटे चरवाहों की छावनी में थे या जहाँ पर वे चरवाहे ठहरते हैं, जहाँ हम पीछे की ओर जाकर पशुओं को घेर कर इकट्ठा करते थे। मैंने उन्हें सुबह तक सोने दिया और तब अगले दिन मैंने इस दर्शन का उल्लेख किया और मैंने कहा, कोई युवा महिला जो बहुत ही सुंदर है, जो दिल के दौरे से मरने वाली है, और 2 दिन बाद बाहर सड़क पर वहाँ ये रेडियो पर ये खबर आई कि यह कुमारी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मोनरो, श्रीमती मोनरो, मैं सोचता हूँ यह उसका मंच का नाम है या वह जो भी था उसका नाम कुछ और था, और वह मर गई थी और उन्होंने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी यह कहूँ, वे तब भी यही कहेंगे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया था, वह दिल के दौरे में मरी। और यदि आप ध्यान दें, उसने उसके हाथ से उसने फोन करने की कोशिश की, फोन उसके हाथ में था, उसे दिल का दौरा पड़ा था। वे कहते हैं नींद की गोलियां वहाँ थी, वह उस बोतल में से पिछले 1 महीने से, देखो या उससे अधिक, उसमें से गोलियां खा रही थी। वह दिल के दौरे से मरी और वह बिल्कुल ठीक 4 बजे से लगभग 4 या 5 सेकंड पहले मरी। और मैंने पत्रिका में उसकी जीवन कथा पढ़ी कि वह कैसे, किस प्रकार से वह एक अवैध संतान थी और किस प्रकार से उसने बहुत सारे जूठे बर्तन धोए, और उसकी माँ पागलों की संस्था में थी और उसकी लालसा थी। मैं समझता हूँ कि संसार भर में वो बहुत ही अच्छी सुगठित शरीर वाली महिला थी, लेकिन उसने किसी ऐसी चीज की लालसा की थी जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। मैंने सोचा, ओह काश कि मैं उससे मिल सकता, मैं जानता हूँ उसे किस चीज की आवश्यकता थी। वहाँ आप हैं, हो सकता है आप नामी प्राप्त कलीसिया के सदस्य हों, बेहतरीन प्रसिद्ध हॉलीवुड जहाँ सारी सजावट और तड़क भड़क होती है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को देखा, वह देख सकती थी कि वे उससे अलग जीवन नहीं जीते हैं जो वो खुद जीती है। इसके लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है, इसके लिए लोगों के बीच मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है कि वे देखते हैं कि मसीह कोई मूरत नहीं है जो कि एक इमारत पर टंगी हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा के रूप में एक जीवित अस्तित्व है, पुरुष और महिलाओं में रह रहा है, जो शांति और संतोष और प्रसन्नता को ला रहा है। ओह, यदि हम केवल उस युवा स्त्री से मिल सकते इससे पहले कि वह संसार को छोड़ती। अब प्रभाव, हम पाते हैं कि उजिया के जीवन ने इस भविष्यता के ऊपर प्रभाव डाला, यहाँ तक कि उजिया ने बल्कि दीवारें बनवाई और स्वयं को मजबूत किया, और पलिस्तियों से वे भूमि और संपत्ति वापस ले ली जो उनकी थी, और इत्यादि, यहाँ तक कि उसकी प्रसिद्धि मिस्र तक फैल गई। और मैं आपको बताता हूँ, राजाओं के सारे ऐतिहासिक घटनाओं में सुलेमान को छोड़ और कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका उजिया की तरह नाम फैला हो। क्यों? क्योंकि उसने उदाहरण को स्थापित किया, वो परमेश्वर के साथ बना रहा। इससे कोई मतलब नहीं उसके लोगों ने क्या सोचा, कोई और क्या सोचता है, उसके राजनीति के लोगों ने उस पर कैसा प्रभाव डालने की कोशिश की। वह सीधा परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। इस युवा भविष्यता के लिए यह एक बड़ी सहायता थी। परमेश्वर एक व्यक्ति को कितना आशीषित करता है जो कि परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा बना रहता है। अब हो सकता है वो लोकप्रिय नहीं होगा, लेकिन वो आशीषित होगा। और अब लोगों को अपना चुनाव करना होगा, चाहे तो आप बाकी लोगों की तरह व्यवहार करना चाहते हो, या चाहे तो आप परमेश्वर से आशीषित होना चाहते हो। अब आप बस अपना चुनाव कर सकते हैं। यदि आप उन बाकियों की तरह जीवन को जीना चाहते हैं, तो आप उनसे आशीषित होंगे। लेकिन आप अपनी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पर डाल दें, तो आप परमेश्वर से आशीषित होंगे। इसलिए आपको करना होगा, आज चुनाव होगा कि आप किसकी सेवा करेंगे। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, हमेशा ही अपने सृष्टिकर्ता को पहले याद रखना, हमेशा ही। अब लेकिन जब यह राजा ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि एक महान व्यक्ति हो गया और वो यशाया और धर्मी लोगों को प्रभावित कर रहा था, निश्चय ही अपने राज्य के वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जिसे वो आत्म सुरक्षित महसूस कर रहा था। और यहीं पर आप अपनी गलती कर बैठते हैं। यही है जहां बहुत से धर्मी लोग लज्जा की धूल चाटते हैं, हार की धूल चाटते हैं, क्योंकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आप ये सोचना आरंभ करते हैं कि आपने मसीह के लिए लंबे समय से जी लिया है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके सामने क्या रखता है। आप अपने चुनाव को करेंगे, भले ही आप इसे चाहें या नहीं। आपको निरंतर परमेश्वर की सेवा करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 वर्ष पहले क्या थे। बात ऐसी है कि अभी आप क्या हैं। राजा एक ऐसे स्थान पर आ गया कि उसने अपने आप में सोचा कि वह ऊंचा उठ गया है। उसके हृदय में घमंड आ गया। और यही है जो हमारे साथ होता है। यदि आप इस अभिव्यक्ति के लिए क्षमा करें, तो यही है जो सारे देश भर में हमारी कलीसियाओं में हुआ है। वहाँ पर वे बहुत अच्छे लोग हैं। संसार के कुछ अच्छे लोगों में से कुछ लोग कलीसिया जाते हैं। मैं सोचता हूँ संसार के अच्छे लोग कलीसिया जाते हैं, लेकिन इसमें बात ऐसी है कि संगठन की व्यवस्था को ऊपर उठाया जाता है। यही है जो उस मेथोडिस्ट के साथ हुआ है, यही है जो बैप्टिस्ट के साथ हुआ है, यही है जो नाजरीन के साथ हुआ है, पिलग्रिम होलीनेस पेंटिकॉस्टल के साथ। ऊपर उठ गए स्वयं की इच्छा से, आत्म केंद्रित घमंड कि आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। परमेश्वर उनके हृदय के अंदर जाने के लिए मार्ग को पा ही नहीं सकता। यह इसलिए है क्योंकि वे इतने अधिक सब कुछ जानने वाले बन गए हैं कि कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बता सकता है। और उन्होंने अपने चारों ओर भाइयों से तर्क वितर्क बनाने के द्वारा उन्होंने अपने चारों ओर अपने धर्म सिद्धांत बना लिए हैं। और जब वे ऐसा करते हैं, तो वे परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। यही है जो डॉक्टरों के साथ होता है। जब वे डॉक्टर इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि उन्हें परमेश्वर से किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यही है जब मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मेरे साथ इलाज करे। सही है, जी हाँ। जब आप किसी भी चीज में परमेश्वर को बाहर कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी बाहर कर दें, समझे? क्योंकि आपको हमेशा ही पहले परमेश्वर को याद रखना चाहिए। वो ऊंचा उठ गया। आज बहुत से आप एक परिवार के लोगों को ही लें जो कलीसिया जाना आरंभ करते हैं, और परमेश्वर उस छोटे परिवार को चंगा करता है। वो उन्हें आशीषित करेगा और उनके जीवन में पवित्र आत्मा को देगा। छोटे बच्चे खाने की टेबल के चारों ओर प्रार्थना को करेंगे। वे बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। माता और पिता हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, और जब तक वे इस प्रकार निरंतर करते रहते हैं, वे एक परिवार की तरह बने रहेंगे। लेकिन आप उन्हें करने दें। पहली बात, आप जानते हैं, उनके पास कुछ नहीं था। एक पुरानी जंग लगी हुई कार, उसी में घूमते हों या हो सकता है चलते हों। आखिर में उन्हें एक अच्छी कार मिलती है, एक अच्छा घर, और पहली बात आप जानते हैं, तब वे वह पाना चाहते हैं जो वे चाहते हैं, जिसे संसार कहता है एक बेहतर दर्जे के लोग जिनके साथ संगति करना है। वे किसी भिन्न पड़ोस में चले जाते हैं, और वहाँ पर वे पाते हैं कि वे गलत प्रभाव के द्वारा प्रभावित हो गए हैं। आपको अवश्य ही हमेशा वहीं बने रहना चाहिए जहाँ परमेश्वर का राज्य है, और जहाँ परमेश्वर की महिमा उंडेली जा रही है, वहीं बने रहिए। जहाँ आपको आत्मिक तौर से दिन रात भोजन खिलाया जा सके, तब पहली चीज आप जानते हैं, घर में और संसारिकता में अलगाव आने लगता है, और वे मन में फूल जाते हैं। उजिया ने यही किया, वह मन में फूल गया, बहुत घमंड। और अब हम देखते हैं कि उसने क्या करने की कोशिश की। अब वह अपने हृदय में फूल गया, तो वास्तव में उसे क्या हो गया, हमें बाइबल में बताया गया है। इतिहास के 26वें में हम पाते हैं दूसरा इतिहास 26, हमें पता चलता है कि वो प्रभु के मंदिर में चला गया अपने हाथ में एक धूपदान लिए हुए प्रभु के लिए धूप को जलाने के लिए। और जब उसने ऐसा किया तो मंदिर का सेवक और दूसरे 80 अन्य सेवकों के साथ उसके पीछे पीछे गए और उसे बताया, ऐसा ना करें, आप गलत हैं, आप एक सेवक नहीं हैं, आप एक राजा हैं, ना ही एक सेवक। और वह क्रोधित हो गया और वो भड़क उठा और उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसने धूपदान जलाया कि कहीं भी जाए, और परमेश्वर ने उसे ठीक वहीं पर कोड़ दे दिया जब वो वहाँ अपने क्रोध में खड़ा हुआ था, और वो कोड़ी की दशा में मरा। उन्हें उसे मंदिर से बाहर लेकर जाना ही था। अब यही है जहाँ हम एक सबक को चाहते हैं। यदि यह मनुष्य जिसे परमेश्वर ने उसे उसकी क्षमता में आशीषित किया था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था, वो किसी और का स्थान लेना चाहता था। आप कुछ भी नहीं हो सकते। जैसे कि एक कांग्रेसी व्यक्ति उपशा, आपको वो याद होगा, वो एक जो 68 वर्षों से अपाहिज था और वो वहाँ एक सभा में चंगा हुआ था। आप जानते हैं वो संयुक्त राज्य का कांग्रेस का सदस्य था। उसने कहा, आप कुछ भी नहीं बन सकते जो आप हैं ही नहीं। इसलिए यही सत्य के विषय में है, आपको अपनी बुलावट में बने रहना है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अब जब तक वो राजा बना रहा और राजा होने के नाते वो लोगों के लिए आशीष था, लेकिन जब उसने सोचा कि वो एक सेवक है, उसने सोचा क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था, जो भी वह चाहता है वो बन सकता है, लेकिन एक राजा के रूप में वह लोगों के लिए आशीष था, लेकिन एक आशीष नहीं, वह उन पर एक शाप हो गया जैसे ही उसने एक सेवक का स्थान लेने की कोशिश की। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत हैं, हर कोई गेंद अपने पास रखना चाहता है, समझे। जब आप एक बॉल का खेल खेलते हैं, जैसा कि यह फुटबॉल का मौसम है, वो चीज जो हम करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि हर कोई यह कोशिश करे जिसके पास बॉल है उस व्यक्ति से बॉल को दूर करे। वो उस व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसे आगे निकल जाने दे। हम तो एक गोल करने की कोशिश करते हैं, समझे। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक टीम इतनी अप्रशिक्षित है कि एक व्यक्ति को ढूंढे, उनके अपने ही व्यक्ति को, जो कि मैदान में गोल करने के लिए बॉल को लेकर भाग रहा हो, और फिर बजाय इसके कि शत्रु को उससे दूर हटाने की कोशिश करें, विरोधी टीम के अपने ही व्यक्ति से जिसके पास बॉल है उससे छीनने लगें। हर व्यक्ति उसके हाथ से गेंद लेने की कोशिश कर रहा है। क्यों? निश्चय ही आपका हारना पक्का है। और आज हमारे पास यही चीज है, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दृश्य पर आता है और किसी विशेष चीज को आशीषित करने जा रहा है, तो आइए हम उससे सारे शत्रुओं को दूर रखें। आओ हम अपने प्रभाव का उपयोग रक्षक की तरह करें, ना ही दौड़ने वाले ऐसे रक्षक जो दौड़ने वाले का बचाव करते हैं, उसे बॉल लेकर आगे निकल जाने दें, क्योंकि वहाँ कोई विरोधी पक्ष नहीं है, उसे तो बस निरंतर आगे दौड़ते रहना है, और हमें वो बचाव करने वाला ही बने रहना चाहिए। आप जानते हैं, मैं विश्वव्यापी स्तर पर बोलता हूँ, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन लोगों के लिए जो संसार भर में याजक सभा को आयोजित करते हैं। और ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं विश्वास करता हूँ, यह किंगस्टन जमैका की बात है, जब उनके पास क्रास्तो और वे सारे वहाँ इस सभा में थे, या हम उसके स्थान पर गए थे, या इसी तरह से था, और सारे टापू में से नामी प्रसिद्ध लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वे बिजनेसमैन वहाँ सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। ये काम उसके क्षेत्र का नहीं है। हम प्रचारकों को ही सब कुछ सही और संतुलित रखने में बहुत कठिनाई होती है, और वे अपने हर छोटे से छोटे प्रभाव का प्रयोग करते हैं, और इस तरह की और उस तरह की तरकीबों का प्रयोग करते हैं, और बातों को इतना उलझा देते हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या किया जाए। बहुत सी बार एक कलीसिया में एक छोटी कलीसिया बेदारी को बनाए रख सकती है। कोई तो यहाँ से बाहर जाकर और प्रार्थना की सभा की अगुवाई करना चाहता है, और फिर उससे भिन्न भिन्न विचार मिलते हैं जो वास्तव में बाइबल कहती है उससे भिन्न, लेकिन वो इसे इस तरह से विश्वास करता है जो जो भी हो, और वो एक प्रभाव को डालना आरंभ करेगा और दूसरों को इससे दूर करेगा। वो चीज जो करना है कि इस संदेश की रक्षा करें जिस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक इसके साथ बने रहें और हर एक चीज को इससे दूर रखें। यदि हम कभी गोल की रेखा को पार करने जा रहे हैं तो ठीक है। और मैंने कहा, भाइयों, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग बिजनेसमैन हैं, पहले स्थान पर आप दृष्टिकोण को नहीं समझते, आप सेवकाई के प्रति दृष्टिकोण को नहीं समझते हैं, क्योंकि सेवकाई एक परमेश्वर की बुलावट का दान है। परमेश्वर ने कलीसिया में पहले कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को शिक्षक, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को पास्टर करके स्थापित किया है। परमेश्वर ने उन्हें वहाँ कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए स्थापित किया है। बिजनेसमैन को गवाही देनी चाहिए, स्त्रियाँ, गृहिणी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप किसी के घर में काम करते हैं, गवाही को दें, हर एक चीज को करें जो आप राज्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने विचारों को इसके अंदर मत डालें, केवल वही कहें जो संदेश कहता है और आगे बढ़ते रहें। देखो, और तब हो सकता है आपका कुछ प्रभाव हो, लेकिन तब तक प्रचार करने की कोशिश ना करें। आप जानते हैं, जब तक परमेश्वर आपको नहीं बुलाता है, बस ठीक अपनी उस गवाही के साथ बने रहें, क्योंकि यदि आप नहीं बने रहते हैं तो आप गलत श्रेणी में चले जाते हैं और तब आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा ही है, और यह परमेश्वर को बिल्कुल प्रसन्न नहीं करता। यह यहाँ इसे साबित करता है। जब यह राजा, अब जब उसे फटकार लगाई गई और भवन के सेवकों के द्वारा सत्य बताया गया और उसको ये बताने की कोशिश की गई कि वो गलत था, कि परमेश्वर ने इसे करने के लिए केवल हारून के वंश को बुलाया है और वे ही केवल इस सेवकाई के लिए समर्पित किए गए हैं, बस केवल उन्हें ही ये सब करना था, वे इसके लिए समर्पित किए गए थे। और एक राजा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना धार्मिक था या परमेश्वर ने उसको कितना आशीषित किया है, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो धूपदान को जलाए। वो याजक के स्थान को ले रहा था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जब उसे फटकार लगाई गई थी तो वो क्रोध में आ गया, उसका गुस्सा ऊपर चढ़ने लगा। और ठीक जिस समय उसका गुस्सा ऊपर चढ़ने लगा, कोढ़ उसके चेहरे पर दिखाई दिया, वह कोढ़ से ग्रसित हो गया और तब उसने धूपदान को छोड़ दिया, भवन से बाहर भागा। देखा, किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध में आकर उसने गलत किया और उस पर प्रहार किया गया। ओह, निश्चय ही यह इस युवा भविष्यवक्ता के लिए एक सबक था। यह देखते हुए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मनुष्य कितना बड़ा है, उसे अपनी बुलावट में ही बने रहना था। मैं समझता हूँ कि इसे टेप किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि यह समस्त संसार में जाएगा, वहाँ पीछे जंगलों के अंदर और जंगली जातियों में और बाकी के हर एक स्थान में आज रात्रि का यह संदेश बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। लेकिन मैं यह अपने पूरे हृदय से कहता हूँ, कैसे हो सकता है? बहुत से लोग कहते हैं, आप क्यों नहीं किसी एक संगठन के साथ जुड़ते हैं? आप पेंटिकॉस्टल के साथ आकर क्यों नहीं जुड़ जाते? आप इस झुंड के साथ आकर क्यों नहीं जुड़ जाते? आप इन छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस संदेश के साथ बने रहना है। जब प्रभु का दूत वहाँ नदी पर प्रकट हुआ, उस उजाले में जैसा कि आपने वहाँ देखा है, और जब इसे सरकार के द्वारा और हर कहीं से विज्ञान से साबित हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान ने कहा कि यह सत्य है और मुझे उसने इस वचन के साथ बने रहने को कहा, तो फिर मैं कैसे इसे एक मत सिद्धांत के लिए अदल बदल कर सकता हूँ? यदि वे लोग वहाँ इसे कर रहे हैं तो उन्हें इसे करने दो, लेकिन हमें वचन प्रचार करने के लिए बुलाया गया था। समझौता न करें, वचन पर स्थिर रहें। इसलिए अब आप कारण को देखते हैं कि समझौता करने की कोशिश करना और कुछ तो और करने की कोशिश करना एक खतरनाक चीज है, या अपने आप से ऊपर उठने की कोशिश करना और कहना, ओह, मैं ये कर सकता हूँ और अधिक पैसा बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और सारे भाई लोग मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, मैं इस वचन पर समझौता कर सकता हूँ, और ओह, उनके 99% सेवक ठीक तुरंत ही पलट कर कहेंगे, ये ठीक है, ये अच्छा है। मैं जानता हूँ उनमें से बहुत से फोन करते हैं, ये क्या है, रोटियाँ और मछलियाँ, देखते हुए कि लोग चंगे हो रहे हैं और हृदय के विचारों को परखना और परमेश्वर की सामर्थ्य और इत्यादि प्रकट होती है। वे आपको वहाँ ले जाते हैं कि सभाओं को करें और लोगों को लेते हैं उनकी कलीसियाओं और इत्यादि में ले जाते हैं, लेकिन जब वचन पर सहमति की बात आती है तो वे इससे दूर जाने लगते हैं। देखा, आप यह नहीं कर सकते, वचन के साथ बने रहें। अब यह उस युवा भविष्यता के लिए सबक था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या बनने की कोशिश की, उसे अपनी बुलावट पर बने रहना चाहिए। ओ प्रभु, उसने वहाँ सीखा परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए है कि उसके स्थान में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा स्त्रियों के लिए है कि वो भी उनके स्थान में बने रहें। आप एक मनुष्य का स्थान नहीं ले सकते, वे इसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा न करें। पुरुष स्त्रियों का स्थान ना लें, स्त्रियों के जैसे कपड़े ना पहने और स्त्रियां पुरुषों जैसे कपड़े ना पहने। बाइबल कहती है कि ऐसा करना गलत है। बाइबल कहती है एक स्त्री जो पुरुष से संबंधित वस्त्र पहनती है वो परमेश्वर के सामने गंदगी है, एक घृणित बात, समझे। लेकिन आजकल तो एक को दूसरे से पहचानना ही मुश्किल हो गया है, समझे। अब आप क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि बस इसके विरोध में आवाज को उठाएं, समझे। अच्छा, फिर जब आप ऐसा करते हैं, क्या आपने इस सप्ताह अपने यहाँ इंडियाना में इस कोर्ट का आदेश पत्र देखा? कितनी शर्म की बात है, 15 वर्ष से कम समय से पहले की बात है, यहाँ पोर्ट फल्टन में एक परिवार, मैं सोचता हूँ कि उस परिवार से कुछ लोग आज रात यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पोर्ट फल्टन में स्कूल में छोटे कपड़ों के ना पहनने के लिए उन्होंने एक छोटी लड़की को स्कूल से वापस घर भेज दिया, और इस सप्ताह वे मुकदमा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे स्कूल से निकाल दें, और उन्होंने ऐसा किया। एक छोटी लड़की जिसने स्कूल में छोटे कपड़े पहनने से मना कर दिया, हमारे राष्ट्र के साथ क्या मामला है? मैंने सोचा था कि यह एक स्वतंत्र देश है, मैंने सोचा था कि हमारे पास एक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है। यह पिता ने खड़े होकर और कहा कि यह हमारे धार्मिक विश्वास के खिलाफ है कि हमारे बच्चे छोटे कपड़े पहने, हमारी 16-17 वर्ष की छोटी लड़कियां छोटे कपड़े पहने, यह हमारे धार्मिक विश्वास के विरुद्ध है। और उन्होंने खारिज करके बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। मैं समझता हूँ कि हर कोई जो सहमत नहीं होगा और इसमें आकर वो इस संगति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंदर नहीं आते हैं जिसे वे संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारी कलीसियाओं को एक साथ जोड़कर इसके अंदर डालें कि कलीसियाओं का संघ बनाएं, कि वे सब जो इसमें नहीं आएंगे और इसमें सम्मिलित नहीं होंगे उसके लिए एक छोटा सा प्रांत बना दिया जाएगा। वे उन्हें अलास्का भेज देंगे। आप एक ठंडे मौसम के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह अब आ रहा है, इसलिए क्या ही शर्म की बात है। मेरे जीवन के पुराने मित्र जिम पूल, उसका लड़का आज रात यहाँ खड़ा है। मेरी इच्छा है कि उसके पिता केवल आकर और वही करें जो उसके पुत्र ने किया। और आज हम टेलीफोन पर बात कर रहे थे और वे इस विषय पर टिप्पणी कर रहे थे। मैं सोचता हूँ कि किसी समाचार पढ़ने वाले पर या कोई तो था, अभी मुझे याद नहीं कि ये कौन था, लेकिन कहा ऐसा हुआ करता था कि अमेरिका के लोग सप्ताह में एक बार नहाते थे और प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, और कहा अभी वे प्रतिदिन नहाते हैं और सप्ताह में एक बार प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं निश्चय ही इसे बिना नहाए करूँगा, लेकिन बस यह दर्शाने के लिए कि हम कितने गिर गए हैं, इस राष्ट्र को क्या हो गया है। लगभग 5 वर्ष पहले मैं ओहियो में था और वहाँ पर मेरी एक सभा थी। उस स्थान का क्या नाम है जहाँ पर मैंने यह बाहर रखी थी, उस पर चटाकोवा, और एक होटल में मैं समाचार प्रसारण को सुन रहा था और उसने कहा आज दोपहर यहाँ ओहियो के कोर्ट में स्वतंत्रता का फूल मुरझा गया। एमिश लोग वे अपने बच्चों को इन पब्लिक स्कूलों में भेजने में विश्वास नहीं करते, उनके अपने स्कूल होते हैं, और कहीं तो इस इलाके में जहाँ पर ये लोग रहते थे उनके पास वहाँ कोई हाई स्कूल नहीं था। यह ओहियो और इंडियाना का कानून है। मैं सोचता हूँ एक राष्ट्रीय कानून कि 16 वर्ष के होने तक सारे बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है, और इस व्यक्ति के 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, जो कि 16 वर्ष के नहीं थे, और उन्होंने उन्हें पब्लिक स्कूलों में भेजने से मना कर दिया जहाँ वे डार्विन के नीति शास्त्र को सिखाते हैं कि मनुष्य केवल एक ही कोशिका से उत्पन्न हुआ, एक बंदर होने के लिए वह केवल यही है, बस एक महिमामंत बंदर है, और इसलिए वे इससे सहमत नहीं थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इसे सुने और इसलिए कोर्ट ने उन्हें अंदर घसीटा और इस छोटे से सहायक चतुर न्यायाधीश ने बूढ़े पिता और माँ से कहा, जो उसके आधुनिक कटे हुए बाल के साथ और चोगा पहने हुए था। उसने कहा, श्रीमान, इस ओहियो प्रांत का यह कानून है जो ये कहता है बच्चे को अपने 16 वर्ष की उम्र होने तक स्कूल में जाना अवश्य है, और कहा आपने अपने बच्चों को भेजने से मना किया, आपके पास क्या उत्तर है? उसने कहा, आदरणीय श्रीमान, मैं इस सुंदर प्रांत के कानून का आदर करता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। उसने कहा, लेकिन हम यहाँ वर्षों पहले हमारे पूर्वज धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आए थे और इसी कारण से हम यहाँ पर हैं, उस धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम यह विश्वास नहीं करते कि हम एक जानवरों से मनुष्य बने हैं, कि हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे। इसलिए यह हमारे धार्मिक विश्वास के विरुद्ध है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें जो इस प्रकार का सिखाता हो। इसलिए यहाँ हमारे बच्चों के लिए कोई हाई स्कूल नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ जाएं, और यह इसलिए नहीं है कि हम आपका सम्मान नहीं करते हैं। आप जो विश्वास करते हैं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे अपने लिए हम यह विश्वास नहीं करते और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को यह सिखाया जाए। उसने कहा, या तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें या फिर आप और आपकी पत्नी प्रांत के बंदी गृह में 2 वर्ष व्यतीत करें। कहा, आपका क्या निर्णय है? उसने कहा, माँ और मैं कैद में 2 वर्ष बिताएंगे। और वे घूमे और चलकर बाहर गए। उस बूढ़े न्यायाधीश ने अवश्य ही अपने आप को थोड़ा सा दोषी महसूस किया होगा, इसलिए उसने कहा, याद रखें, क्या आपकी बाइबल नहीं कहती जो केसर का है वो केसर को दो? और पिता वापस घूमा और उसने कहा, और जो परमेश्वर का है? समाचार सुनाने वाले ने कहा, अच्छा, तब तो स्वतंत्रता। और न्यायाधीश ने कहा, मैं आपको 2 वर्ष की सजा सुनाता हूँ। तो उसने कहा, तो फिर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का फूल आज दोपहर इस न्याय के कमरे में मुरझा गया। आखिरकार शराबी, या मेरा मतलब एमिश, इससे कोई मतलब नहीं कि वे कितने अजीब हैं, वे पवित्र जीवन जीने में विश्वास करते हैं। और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहां उन्होंने कभी किसी भी नवयुवक ने अपराध किया हो। एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी बालक उनके धर्म से कभी भी किसी नवयुवक ने अपराध नहीं किया था। उन्हें अजीबो गरीब होने दो, वे जो भी होना चाहते हैं, उनका पालन पोषण सही हुआ है, मैं उन पर दोष नहीं लगाता। लेकिन सुनिए, वो फूल वहीं पर मुरझा गया, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद ये फिर से जीवित हो गया। मुकदमा चलाने वाले वकील और उन सब ने पीछे अपनी किताबों को पीछे की ओर धकेल कर और कहा, तो फिर हम अपने अपने काम के पद से इस्तीफा देते हैं। यदि आप संविधान के अधिकार को तोड़ते हैं तो वे उनमें से बाकी को भी तोड़ देंगे। क्या आपने उस दिन ध्यान दिया जब उस बुद्धिमान बूढ़े मेथोडिस्ट के बिशप ने उसने इस विषय में क्या कहा? वो प्रार्थना जो स्कूल में बोली जाती है यह मेथोडिस्ट कलीसिया की नहीं थी। वह बिशप इतना समझदार था कि वो इस बात को जानता था। यह दूसरा समूह था यह देखने के लिए कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं ताकि स्कूलों में किसी निश्चित प्रार्थना को ठूसने की कोशिश करें। यदि वे इस प्रार्थना को लागू या पास करवा लेते हैं तो वे दूसरी चीज को उतनी ही जल्दी से लागू करवा देंगे जितना जल्दी वे करवा सकते हैं। वे हर संभव मौके को टटोल रहे हैं। चिंता न करें, वे इसे कर लेंगे। ओह, हम क्रूस को चाहते हैं, हम अभी मसीह को चाहते हैं, जबकि हम कर सकते हैं। किसी भी ऐसे मनुष्य से प्रभावित ना होना जो शायद आपको ज्यादा लाभ या सुख सुविधाएं दे सकता है। किसी मनुष्य से प्रभावित ना होना जो कि आपको चलाने के लिए बेहतर कार दे या रहने को अच्छा घर दे और आपके जन्म सिद्ध अधिकार को बेच दे। मसीह के लिए आप ऐसा ना करें। ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं। हमेशा उसी एक का अनुकरण करें जिसका प्रभाव हो और परमेश्वर के द्वारा समर्थित हो। आप जानते हो कि परमेश्वर उनके साथ कहाँ है। गलत प्रभाव का अनुकरण ना करें। जी हाँ, तो ठीक है, किसी दूसरे का स्थान लेने की कोशिश ना करें। मंदिर के दर्शन में उसने सिंहासन पर देखा परमेश्वर को ऊंचे पर, परमेश्वर ऊंचाई पर उठा हुआ है। अब आप इस राजा को देखते हैं जो कि यशाया के समक्ष एक उदाहरण बना, और यशाया ने उस राजा को देखा जैसे ही वो अपनी बुलावट से बाहर चला गया तो परमेश्वर ने उसे कोर से मारा। तब यशाया ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए। उजिया मर गया था, वह पूरी तरह उसी के सहारे था और उसने सोचा वो जा चुका है, वो क्या करे, उसके लिए जीवन लगभग समाप्त हो गया था। सो यह युवा भविष्यता ने क्या किया, वो मंदिर के रास्ते की ओर चला गया कि प्रार्थना करे। वो वेदी पर गिर पड़ा और वह पुकार उठा। कभी कभी परमेश्वर हमारे हर सहारे को हमसे ले लेता है, कभी कभी वो हमारे लिए बीमारी को आने देता है, वो हमें निराश होने देता है, हृदय रोग को आने देता है। कभी कभी वो इसलिए करता है कि आपको वहाँ लाए जहाँ आप सुसमाचार के द्वारा प्रभावित हों। इस बात को समझने के लिए बुद्धिमान बने, इतने मूर्ख ना बने कि इससे दूर चले जाएं। ध्यान दें, यशायाह जान गया कि उसे अवश्य ही कुछ तो भिन्न ढूंढना है, इसलिए उसने क्या किया, वो मंदिर में चला गया। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और वो परमेश्वर के सामने पुकार उठा और वो दर्शन में चला गया। और जैसे ही वो दर्शन में गया, उसने परमेश्वर को देखा, ना ही यहाँ सिंहासन पर, लेकिन ऊंचे पर उठा हुआ वहाँ ऊपर। ओह प्रभु, उसके वस्त्र का घेरा उसके चारों ओर था, ऊपर स्वर्ग में उठा हुआ। और उसने आगे और पीछे सारे मंदिर में से होते हुए देखा, वे सराप उड़ रहे थे। ओह प्रभु, सराप इसका अर्थ जलाने वाले। इस शब्द सराप का अर्थ यही होता है जो कि वेदी के पास होते हैं। असल में सराप ही वो एक होते हैं जो बलिदान को ग्रहण करते हैं और आराधना करने वाले को शुद्ध करते हैं और फिर उसे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं। वे सराप ऐसा करते हैं। अब ये सराप स्वर्गदूत जीव थे और ये परमेश्वर के ठीक पास ही वेदी पर होते हैं और वे बलिदान को ग्रहण करते हैं। यह परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है जिससे पाप उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता जब तक कि इसके लिए प्रायश्चितता को नहीं कर लिया जाता है, समझे। और ये सराप, याद रखें, सात कलीसियाई युगों में कैसे इन्होंने इन सुसमाचारों की रक्षा की, हर तरफ से एक, आपको याद है हमने उन्हें अदन की वाटिका में पीछे देखा, एक धधकती हुई तलवार के साथ वहाँ पर खड़े हैं, वे वेदी की रक्षा करते हैं। और यशाया, वो महान भविष्यवक्ता, जब वो आत्मा में आया तो पहले उसने देखा कि परमेश्वर स्वर्गों में ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है, पृथ्वी के किसी भी राजा से ऊपर। कहा, मैंने राजा को देखा, प्रभु ऊंचे पर बैठा है और ऊंचाई पर उठा हुआ। तब उसने सच्चे राजा को देखा और उसके वस्त्र का घेरा उसके चारों ओर था। और उसने देखा कि वे सराप भवन में हर कहीं उड़ रहे हैं, उनके मुख पंखों से ढके हुए थे, पंख उनके पैरों के ऊपर थे और वे दो पंखों से उड़ रहे थे और वे बोल रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। क्या ही संगीत था, क्या ही लय थी। आप कहते हैं वे अवश्य ही इसे धीरे धीरे कह रहे होंगे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। यशाया ने कहा, जब वे बोले तो भवन के खंभे उनकी आवाज से हिल उठे। अब वे बस ऐसे ही नहीं कह रहे थे, अब पवित्र पवित्र पवित्र। ओह क्या ही आवाज थी। और कहा, और खंभे हिल गए और उनकी आवाज से कांप गए, वे चिल्ला रहे थे। वे दूत जीव परमेश्वर के पास ही खड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या ही दर्शन है। ओह प्रभु, फिर से ध्यान दें, यशाया जो कि उजिया के कंधों के सहारे पर था और उसे परमेश्वर के न्याय के नीचे मरते देखा और तब उन पवित्र जीवों को देखा जो कि परमेश्वर के पास ही खड़े थे। वे सराप चिल्ला रहे थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और उन पवित्र स्वर्गदूतों ने अपने मुख को ढाके रखा है, पवित्र स्वर्गदूतों ने पवित्र मुख को पवित्र परमेश्वर के बीच ढाके रखा था। तो फिर हम कौन हैं? अब ओह, आप मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और पेंटिकॉस्टल, हम हैं कौन? जबकि पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए अपने पवित्र मुखों को पंखों के नीचे छिपा लेते हैं। जब वे दूत एक जीव जो कि असल में दूतों से भी आगे हैं। वे दूत वहाँ नहीं खड़े होते हैं, केवल वे सराप ही। वे दूतों से भी आगे हैं और परमेश्वर इतना पवित्र है कि यहाँ तक वे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुख को ढाक लेते हैं और केवल एक बात वे ये कह सकते थे, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए उनके लिए एक विशेष आवरण था। हमें किस प्रकार के आवरण या ढाके जाने की आवश्यकता है? उन्हें ढका जाना जरूरी था। अब मैं इसे ठीक यहाँ कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का लहू ही सर्व पर्याप्त है। समझे, मसीह कभी भी उन सरापों के लिए नहीं मरा, नहीं नहीं, लेकिन वे सृष्टि किए हुए जीव थे। वह दूतों के लिए कभी नहीं मरा, वो पापियों के लिए मरा, वह पवित्र लोगों के लिए कभी नहीं मरा, वह अपवित्र के लिए मरा। और जब तक आप सोचते हैं कि आप पवित्र हैं, वह आपके लिए कभी भी भला नहीं करता है, लेकिन जब आपको एहसास होता है कि आप कुछ नहीं हैं, तब वो आपके लिए मरा। समझे, जब आप ये अनुभव करते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, तब वो वही है, आप ही वो एक हैं जिसके लिए वो मरा। परमेश्वर पूर्ण पवित्र है, उसमें पवित्रता को छोड़ और कुछ भी नहीं है, बस यही है शुद्धता। अब आइए हम कुछ मिनटों के लिए इन पंखों के लिए ध्यान दें। हम पाते हैं कि दो पंखों से वह अपने मुख को ढाके हुए हैं। ओह, जरा सोचे, यहाँ तक कि पवित्र दूत भी पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मुख को ढाके हैं, और वे केवल एक ही बात को कह सकते थे, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और हमें बताया गया कि वे दिन और रात यही चिल्लाते हैं, यही परमेश्वर से नीचे आते हुए पहला कदम है। दिन और रात कहीं भी रुकते नहीं। और आप सोचते हैं कि हम बहुत ही शोर मचाते हैं, और आप उन लाखों के विषय में क्या सोचते हैं जो सिंहासन के चारों ओर हैं, उस आवाज के साथ जिससे मंदिर के खंभे हिल गए जब उनमें से केवल एक ही चिल्लाया, पवित्र पवित्र पवित्र। आप जानते हैं, उसकी आवाज ने मंदिर को हिला दिया, जबकि उनमें से लाखों परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर चिल्ला रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उनके मुख पर पंखों के साथ उनके पैरों पर पंख थे, आदर सम्मान। ओह प्रभु, अब किसी के लिए भी सम्मान या आदर नहीं है जो पवित्रता के विषय में बातें करता है। आप पवित्रता के विषय में बात करते हो, आप पवित्र शोर मचाने वाले कहलाते हो। अब कोई सम्मान या आदर ना परमेश्वर के लिए है, ना ही उसके लोगों के लिए या उसके वचन के लिए है। अब यह झुंड कहाँ पर जाएंगे? मैं सोचता हूँ तुम सही हो बेन, उस समय तुमने बिल्कुल सही बात को कहा पुत्र। जी हाँ, यह सही बात है। तो फिर यह अनादर करने वाला झुंड आखिर किस अंजाम पर पहुँचेगा? यह अनादर करने वाला झुंड किस अंजाम पर पहुँचेगा? ऐसा ही है, वे लोग जो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल आदर नहीं रखते। आप जानते हैं, ऐसा हुआ करता था, यदि कोई स्त्री या पुरुष कहे कि वे लोग मसीही हैं, तो लोग इसका आदर करते थे। लेकिन आज वे बस देखना पसंद करते हैं कि इसमें से कितना मजाक बना सकते हैं। समझे समझे, अनादर करने वाला झुंड। ओह क्यों, क्या आप जानते हैं, यही कारण है वे सचेत नहीं हैं कि यही सत्य है। वे परमेश्वर के प्रति सचेत नहीं हैं। वे याद नहीं रखते कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहते हैं जो उसका भय मानते हैं। वे केवल आकर और उनसे भेंट नहीं करते, वे उनके तंबू को वहाँ गाड़ देते हैं। आमीन। परमेश्वर के दूत उनके चारों ओर छावनी किए होते हैं जो उसके नाम का भय मानते हैं। वे वहाँ दिन और रात रहते हैं। उस बूढ़े अश्वेत भाई ने यह गीत गाया, वे दूत मुझ पर निगरानी करते रहते हैं। कहा, सारे दिन सारी रात वे दूत मुझ पर निगरानी करते रहते हैं। यह सही है, सारे दिन और सारी रात वे दूत मुझ पर निगरानी करते रहते हैं। यीशु ने कहा उन छोटों के लिए, कहा ध्यान रहे कि इनमें से तुम किसी को भी ठोकर ना खिलाना, क्योंकि उनके दूत हमेशा मेरे पिता के मुख की ओर ताकते हैं जो कि स्वर्ग में है। समझे, वे हमेशा डेरा डाले रहते हैं, उन्हें ताकते रहते हैं। और अधर्मी लोग इस बात का विश्वास भी नहीं करते, हम इसे लेने जा रहे हैं, भक्ति और अभक्ति क्या है, सुबह को ले लेंगे यदि प्रभु ने चाहा तो। अब ध्यान दें, वे इसका विश्वास तक नहीं करते। वे सारी शालीनता खो चुके हैं, सारा सम्मान, सारी भक्ति आदर, और फिर भी वे कलीसिया जाते हैं। वहाँ सबसे अधिक अन आदर युक्त झुंड है। वे जो कलीसिया जाते हैं, ये सही बात है। एक पुराना शराबी या अवैध रूप से शराब बेचने वाला सड़क पर वहाँ से गुजर रहा है और आधा नशे में है। आप उससे प्रभु के विषय में बात करें, वो खड़ा होकर और आपसे बात करेगा। इनमें से कुछ दकियानूसी लोग, नाम के कहलाने वाले विश्वासी कलीसिया के सदस्य, ठीक आपके सामने मुंह पर हंसेंगे क्योंकि आप उनके संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं। ये सही है, निश्चय ही वे आदर करने वाले लोग नहीं हैं। आपको लगता है कि आपको उनके छोटे गुट से संबंध रखना होगा, या तो आप उनके सड़क के उस पार भी नहीं रह सकते हैं। समझे, ये सत्य है, अनादर पूर्व। अब वे दूत, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, वे विश्वास करता हूँ, दाऊद ने कहा। आपको याद है, यहाँ पर कुछ रात पहले जब मैं किसी चीज पर प्रचार कर रहा था और उसने कहा, दाऊद ने कहा, मैं निरंतर प्रभु को अपने सामने रखता हूँ ताकि मैं कभी न डगमगाऊं। जो भी हो, उसने कहा, तब जब मैं यह करता हूँ, मेरा शरीर आशा में विश्राम करेगा। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि मैं जानता हूँ वह मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, क्योंकि प्रभु सदा मेरे सम्मुख रहता है। जहाँ भी आप जाएं, परमेश्वर को आगे रखें। यदि मनुष्य क्रोधित होकर और आपको कोसता है, तो परमेश्वर को अपने और उसके बीच में रखें। यदि वो आपको पवित्र शोर मचाने वाला कहता है, तो परमेश्वर को अपने और उसके बीच में रखें। यदि पत्नी आप पर क्रोध करती है, तो परमेश्वर को आगे रखें। यदि पति क्रोध करता है, तो परमेश्वर को आगे रखें। यदि बच्चे आपको क्रोधित करते हैं, तो परमेश्वर को आगे रखें। समझे, आप जो भी करते हैं, परमेश्वर को आगे रखें। यदि पापा और मम्मी आपको थोड़ी पिटाई करते हैं और आपका सुधार करते हैं, तो परमेश्वर को आगे रखें। याद करें कि इस विषय में परमेश्वर ने क्या कहा है। बच्चे को उसी मार्ग पर की शिक्षा दें जिसमें उसे चलना चाहिए। समझे, हमेशा याद रखें, परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर को अपने सम्मुख रखें, और आपके पास परमेश्वर के लिए आदर भाव और उसका सम्मान होगा। यह ठीक बात है। अब ध्यान दें, दो पंख से वो अपना मुख ढापे हैं, और दो पंखों से इसका अर्थ आदर, परमेश्वर के सम्मुख आदर, झुकते हुए अपना मुख ढाके हुए। अब हमारे पास कोई पंख नहीं है कि जिनसे हम अपना मुख ढापे। हम अपना सिर उसके कदमों में झुकाते हैं, अपने सिरों को झुकाकर और आदर से प्रार्थना करते हैं, सम्मान देते हुए। जी हाँ श्रीमान, इसे पहचाने। और दो पंखों से उसने अपने पैरों को ढाक रखा है, उसके पांव ढाके हुए हैं। ये नम्रता और आदर को दर्शाता है। जैसे मूसा उस सम्मान में, परमेश्वर ने उसे बताया कि वह पवित्र भूमि पर था, उसने अपने जूते उतार दिए। समझे, उसने उसके पैरों के लिए कुछ तो किया। पौलुस ने परमेश्वर के प्रति सम्मान आदर में, जब प्रभु का दूत उसके सामने आया, वो आग का खम्बा, वो अपने मुख के बल भूमि पर गिर पड़ा। आदर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर इतना आदर था, जब उसने यीशु को आते देखा तो उसने कहा, मैं तो उसके पैरों को छूने के भी योग्य नहीं हूँ। समझे, पैर सम्मान को दर्शाता है। समझे, ओह जागरूक रहें, यहाँ एक ही चीज से जागरूक रहना है, आपका छोटापन। यदि आप कहीं तो परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं, तो वास्तव में अपने आप को छोटा बनाएं। अपने आप को उजिया के समान बड़ा न बनाएं। वो भीतर चला गया और उसने कहा, जो भी हो मैं इसे करूंगा, चाहे मैं, मुझे ये बताना तुम्हारा काम नहीं है। समझे, उसे अपने आप को नम्र बनाना चाहिए था। जी हाँ, यीशु मसीह के सेवको, मुझे क्षमा करें, तो उसे कभी भी कोड नहीं होता। नहीं, मैं जानता हूँ ये आपका काम है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ये आपका कार्यस्थल है, आप आगे बढ़ें और इसे करें। श्रीमान, मुझे बहुत खेद है, पीछे हटता तो इस पुस्तक में भिन्न बात लिखी होती, लेकिन जब उसे सुधारा गया था तो वह क्रोधित हो गया। आप लोगों को किसी बात के विषय में सुधारते हैं, या आप उनके गलत करने के बारे में बताते हैं, तो वे कलीसिया को छोड़ देंगे। वे चाहते हैं किसी के पास जाइए, स्त्रियों को बताएं कि उन्हें छोटे बाल नहीं रखने चाहिए। तो ठीक है, मैं कहीं और जाऊंगी जहां वे इन्हें कर सकते हैं। कुछ समय पहले एक महिला यहां आई, मैंने अपनी पत्नी को वहां भेजा। हम एक सभा में थे, उसे अपने बाल धोने के लिए समय नहीं मिला, और वो, मैंने उससे कहा कि तुम किसी सौंदर्य वाली दुकान में जाकर और अपने बालों को धो लो। वो वहां पर गई और वो महिला को यह भी नहीं पता था कि उसके बालों को कैसे ऊपर पीछे की ओर रखे। वह उसके सिर के ठीक ऊपर बाल को घुमाकर जूड़ा बनाती थी। यहाँ आकर कहा, मैंने कभी भी किसी लंबे बाल वाली महिला के बाल नहीं धोए हैं, इसलिए वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं पता, ओ प्रभु, देखा, वे नहीं जानते कि ये सब क्या है। क्यों? इसका कारण वे कमजोर पुलपिट के नीचे बैठे हैं। सही है, बिल्कुल सही। कमजोर पुलपिट ये सच्चाई को नहीं बताएगा, वे इसके साथ समझौता करते हैं। समझे? अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप इसे सुन लें और आप उनमें से किसी से बात करें। वे उठकर खड़े हो जाएंगे और क्रोधित होकर और कहेंगे, मैं इन पवित्र शोर मचाने वालों की फिर कभी नहीं सुनूंगा। समझे? उजिया, आगे बढ़ते रहो, ये सही है। कोड, क्यों? इससे तो मुझे किसी भी समय यह कोड हो जाए बजाय उस प्रकार के कोड के। यह तो प्राण का कोड है। समझे? जब आप आगे बढ़कर और बाहर निकल जाते हो तो उसी वक्त आप फिर से कोड से भर जाते हो, पाप से, जो कोड से भी बदतर है। यह एक प्राण का कोड है। उजिया शायद जाकर और अपने पिता के साथ सो गया, बाइबल ने कहा, जिसमें कि वह बच गया था क्योंकि उसने बस कुछ तो गलत किया था। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, इसे बेहतर तरह से जानते हुए भी, तब आप प्राण के कोर से भर जाते हैं और तब कोड़ी प्राण को अंदर लाने का कोई तरीका नहीं है। आप ये जानते हैं। तो इसलिए अपने आप को छोटा बनाएं, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र करें, पहचानें, ना ही पूरी तरह से फूलें और ना ही भड़कें। वचनों में ढूंढें और देखो यदि यह सही है। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने किसी को बताया, वे बोले, भाई ब्रैनम, हम समझते हैं कि आप केवल यीशु वाले हैं। मैंने कहा, आपने गलत समझा। देखा, मैंने कहा, मैं केवल यीशु वाला नहीं हूँ। बोले, खैर, आप तो यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। मैंने कहा, तो इससे मैं केवल यीशु वाला नहीं बन जाता। मैंने कहा, केवल यीशु की शिक्षा, वे नए जन्म के लिए बपतिस्मा देते हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं ये विश्वास नहीं करता कि जैसे ही आप यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, आपका प्राण आपके पाप से क्षमा पाता है। मैं सोचता हूँ, पत्रस ने कहा, पहले पश्चाताप करो, वापस घूमो, आप लक्ष्य से हट गए हैं, वापस जाओ, पश्चाताप करें और तब संसार को दिखाओ कि आपका बपतिस्मा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह विश्वास नहीं करता कि फिर से जन्म लेना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, यह फिर से जन्म लेना है। दोबारा हम लहू के द्वारा फिर से जन्म पाते हैं। लहू की कोशिका आती है, मेरा अर्थ जीवन की कोशिका लहू से आती है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन आप लहू के द्वारा जन्म लेते हैं। बिल्कुल, आप अपने पिता के लहू के द्वारा जन्म लेते हैं। मैंने अपने पिता के लहू के द्वारा फिर से जन्म लिया है और आपके द्वारा हमारे पिता मसीह। जी हाँ श्रीमान, लेकिन आप देखिए, हम उस चीज में विश्वास नहीं करते क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं। हमें केवल यीशु वाला न बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं श्रीमान। जी हाँ श्रीमान, जब मूसा ने उस परमेश्वर की आवाज को इस तरह से आते हुए सुना, मूसा ने उपस्थिति में खुद को नम्र किया, कहा, अपने जूते उतार, और मूसा ठीक नीचे की ओर झुका और अपने जूतों को झटक कर उतार दिया। देखा, यह सही है। पौलुस, जब उस प्रकाश ने उसे भूमि पर गिरा दिया, उसने कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? कहा, प्रभु तू कौन है? देखो, सीधा नीचे जमीन पर, यह कौन है? कहा, मैं यीशु हूँ, वो अग्नि का खंबा, मैं यीशु हूँ। तेरे लिए अधिकार पाए लोगों के विरुद्ध होना कठिन है। कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? वो तैयार था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे आते हुए देखा, एक सबसे महान मनुष्य। यीशु ने कहा, कभी भी कोई भी मनुष्य जो एक स्त्री से जन्मा है वह यूहन्ना से बड़ा नहीं। और जब यूहन्ना ने उसे देखा, उसने पहचान लिया, वह बहुत ही छोटा था। उसने कहा, मैं उसके जूते भी उतारने के योग्य नहीं हूँ। आमीन। हमेशा ध्यान दें, एक बड़ा मनुष्य अपने आप को नम्र करता है। ऊपर को जाने का मार्ग हमेशा नीचे से होता है। अपने आप को छोटा बनाएं और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। वह जो अपने आप को ऊंचा उठाता है, नीचा किया जाएगा, लेकिन वो जो अपने आप को नम्र करता है, वो ऊंचा किया जाएगा। ओ प्रभु, मैं इसे पसंद करता हूँ। अपने आप को छोटा बनाएं, हमेशा ही छोटे बने। बड़ा आदमी मत बनो, छोटे व्यक्ति बनो। समझे, हमारे बीच केवल परमेश्वर ही है जो बड़ा है। जो भी हो, यह सही है। आप हमेशा कहना चाहते हैं कि यह पवित्र कलीसिया है, पवित्र लोग है। ओ नहीं, यह तो पवित्र परमेश्वर है, यह सही है। और एक अपवित्र कलीसिया और अपवित्र लोग हैं, सही है। पवित्र कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो एक पवित्र परमेश्वर कलीसिया में है। यह पवित्र लोग नहीं है, यह पवित्र आत्मा लोगों में है। तब आप लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं, वो तो पवित्र आत्मा है जो लोगों में है। आमीन। जी हाँ श्रीमान, यही वो सही शब्द है। आमीन। यह हृदय में चला गया, मैंने ऐसा महसूस किया। जी हाँ श्रीमान, वो इसे पसंद करता है, मैं ये जानता हूँ। महिमा हो। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है। अपने आप को छोटा बनाएं, आदर में, वह अपने मुख को दो पंखों से ढाके रहता है, अपने पैरों को ढककर वह अपने को नम्र बनाता है। अब तीसरा, दो पंखों से वह उड़ता है, उन दो पंखों से वह अपने आप को कार्य में लगाता है। परमेश्वर के सम्मुख वह आदर भाव में होता है, वह परमेश्वर के सम्मुख नम्र होता है। केवल यही नहीं, वह वहाँ पर बस बैठा नहीं रहता, लेकिन वह अपने आप को कार्य में लगाता है। एक कलीसिया के विषय में बात करें, आमीन, अपने आप को कार्य में लगाएं। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी के साथ जाने के लिए तैयार था। जी हाँ श्रीमान, केवल एक ही बात जो वह कह सकता था, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो इसी के साथ अपने आप को कार्य में लगाए रखता है। यह सही बात है, वो कार्य में लगा हुआ है। आज रात्रि कलीसिया को इसी बात की आवश्यकता है। पहला, आदर भाव में रहें, अगली चीज नम्र बने, उसके बाद अपने आप को क्रिया में लाएं। जी हाँ श्रीमान, उसने भविष्यता को दर्शाया। जब उसने भविष्यता को दर्शाया कि कैसे उसने अपने दास का प्रतिनिधित्व किया, वो कैसे करने जा रहा था, इस व्यक्ति ने क्या किया, इस दूत ने, इस भविष्यता ने उसकी आवाज को मंदिर के खम्भों को हिलाते हुए देखा। जब वे चिल्ला रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और भवन हिल गया, और वे फिर से चिल्लाए, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और भवन हिल गया। यशाया ने कहा, हाय मुझ पर, एक भविष्यवक्ता, एक प्रमाणित भविष्यवक्ता, जन्म से एक भविष्यवक्ता, बाइबल का एक प्रमुख भविष्यवक्ता, और उसने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मेरी आँखों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। उस भविष्यवक्ता की ओर देखें जो अपने आप को नम्र करता है। एक भविष्यवक्ता, वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का वचन आया, लेकिन जब उसने एक दर्शन को क्रिया में देखा, उसने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं इतने निकट खड़ा हूँ, यहाँ तक कि मैंने प्रभु की उपस्थिति को देखा। हमारे आधुनिक अमेरिकन लोग इसे घटित होते हुए देख सकते हैं और चले जाते हैं और इस पर हंसते हैं। जी हाँ, यह सही बात है। जब उसने एक दर्शन को प्रकट होते हुए देखा, एक प्रकट दर्शन, हे परमेश्वर, इस पाप से भरे संसार पर दया करें। एक दर्शन जो प्रकट हुआ, वो चिल्ला उठा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ। मैं पूरी तरह से नाश हुआ हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ठीक है, आप कहते हैं परमेश्वर धन्य है, मैं प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल से संबंधित हूँ, मुझे बैठकर इस प्रकार की बातों को नहीं सुनना है। वहाँ क्या ही भिन्नता है, क्या ही भिन्नता। आपको याद होगा कि यह भविष्यवक्ता उसके जन्म से ही बुलाया हुआ और प्रमाणित किया हुआ, अपने कार्यभार के लिए पहले से ठहराया हुआ था, और सच्चाई की खोज में था, और राजा के साथ रहा था। उसने परमेश्वर के कामों को प्रकट होते हुए देखा था, लेकिन जब एक खुला दर्शन आया, तो बजाय इसके कि वह स्वयं को ऊंचा उठाता, उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं पूरी तरह से नाश हुआ हूँ, मैं यहाँ अब इसी के लिए हूँ, क्योंकि मेरी आँखों ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। और हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं, और हम इधर उधर जाकर कहते हैं, यह पवित्र शोर मचाने वालों का एक झुंड, यह लोग जो पागल हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि हम कहीं के भी नहीं हैं। अब याद रखें, मैंने आपको बताया है, जब मैं यहाँ कुछ कहने के लिए आया हूँ, तो यह लोगों की सहायता करेगा, समझे। जी हाँ, हमें अवश्य ही इसका आदर करना चाहिए, हमें अवश्य ही इसे हर तरह से आदर देना चाहिए जितना हम दे सकते हैं। जब हम एक खुले हुए दर्शन को परमेश्वर की ओर से बोलते हुए देखते हैं और जानते हैं कि यह सच्चाई है। यशाया ने कहा, हाय मुझ पर, मैं आज रात यहाँ एक भवन में हूँ, या आज या ये जब भी था, और मैं परमेश्वर की महिमा को देखता हूँ, मैं एक दूत को बोलते हुए देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कुछ तो हलचल हो रही है, और मैं वहाँ ऊपर देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ठीक यहाँ पर प्रकट हुआ है। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। ध्यान दे क्या हुआ, ओ उसने क्या किया, उसने दिखाया यशाया, वो भविष्यवक्ता जो मनुष्य सम्मानित होगा, उसकी उपस्थिति में आदर भाव में होगा, आदर पूर्व और नम्र, और उसके बाद क्रिया में आता है। यह सही बात है, क्रिया में आ जाएं। उस स्त्री की तरह जो कुएं पर थी, जब स्त्री ने देखा कुछ तो घटित हुआ, भाई उसके दो पंख थे, वह उनके साथ तुरंत ही वहाँ से चली गई। वो वहाँ याकूब के कुएं पर कुछ दूषित पानी लेने को आई, जिसके विषय में वे वाद विवाद कर रहे थे, लेकिन जब उस स्त्री को जीवन के सोते से जल मिला, तो वह तुरंत ही क्रिया में आ गई। उसने ऐसा नहीं कहा, श्रीमान कृपया मुझे बताएं कि आपकी शिक्षा कहां पर हुई है, ये चीजें आपको कहां से मिली, आपने इसे कैसे सीखा, या आपको कैसे पता चला कि मेरे 5 पति थे, आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है, आप कैसे जानते हैं कि मैं एक सामरिया की स्त्री हूँ, यह बातें आपको कैसे पता है। उसने कभी भी प्रश्न नहीं किया। उसने कहा, श्रीमान मुझे ज्ञात होता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। हम जानते हैं जब मसीहा आएगा तो वह हमें इन बातों को बताएगा। ओह प्रभु, उसने इसे वचन के द्वारा पहचान लिया और उसने कहा, मैं जानती हूँ जब मसीहा आएगा तो वो हमें इन बातों को बताएगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। वो क्रिया में आ गई और वह जितनी जल्दी नगर के अंदर जा सकती थी वो चली गई। कहा, आओ देखो एक मनुष्य, उसने मुझे वह सब बता दिया जो मैंने किया है। क्या यह वही वो मसीहा नहीं है? जब उसने सत्य देखा तो उसने छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने निश्चित रूप से इसे कुछ एक बहुत ही आदर को दे रही थी और निश्चित रूप से वह इसका बहुत ही समर्थन दे रही थी, क्योंकि वह नगर में गई, कह रही थी, तुम आकर देख लो, यदि तुम्हें इसका विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ चलो। महिमा हो, आज रात मैं एक पवित्र शोर मचाने वाले जैसा महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, ओह यदि आप इसी तरह से महसूस करते हैं, एक पवित्र शोर मचाने वाले ऐसे हैं, तो मुझे भी एक होना है। जी हाँ श्रीमान, मैं जानता हूँ कि वो सही है, मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है, मैं जानता हूँ कि वही मसीहा, मैं जानता हूँ कि वही परमेश्वर, वही मसीह आज रात इस छोटे से गर्म भवन के अंदर उपस्थित है। मैं आपको इसे साबित कर सकता हूँ। आमीन। प्रभु के उस दूत की ओर देखो जो वहाँ कोने में खड़ा हुआ है, ठीक यहाँ पर बैठे हुए एक मनुष्य के ऊपर। उसका नाम, वो एक आदरणीय व्यक्ति है, श्रीमान विट। वो वहाँ वर्जीनिया से है, सही है, नसों से संबंधी रोग से पीड़ित हैं। यदि आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें तो आप घर जा सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं। श्रीमान, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? तो ठीक है, घर जाएं और चंगे हो जाएं। आपका नसों का रोग समाप्त हो गया है। वहाँ सीधे ठीक वहाँ पर जो बैठा हुआ है, उसका नाम मोरिया है, वो इलिनॉयस से आया है, उसे मलाशय में तकलीफ है। यदि आप यह विश्वास करेंगे, श्रीमान क्या आप इसे विश्वास करते हैं? मैं आपके लिए अपरिचित हूँ, क्या आप ये विश्वास करते हैं? वो तकलीफ आपको छोड़ देगी। हालेलुया। जब आपके कोयले ने भविष्यवक्ता को छुआ था, उसको इतना शुद्ध कर दिया जितना शुद्ध हो सकता था। जब परमेश्वर की आवाज ने कहा, कौन हमारे लिए जाएगा, तब उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सतावट क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रूस क्या है, मुझे भेजे प्रभु, मैं यहाँ हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, कितने यह वो या आदि, मुझे भेजें। वो वही मसीहा है, वो ठीक अभी यहाँ है, मैं उसे फिर से देखता हूँ। आमीन। यह क्या है? वो स्त्री क्रिया में आ गई, उसने उन पंखों को लिया और उड़ना आरंभ किया, वो तुरंत ही क्रिया में आ गई। जब प्रेरित पत्रस एक दिन समुन्दर पर, जब उसने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया, उसने सारी रात मछली को पकड़ा था और उसे कुछ भी नहीं मिला, और यीशु उसके पास आया, उसने कहा, अपना जाल नाव की दूसरी ओर डाल। उसने कहा, प्रभु मैं एक मछुआरा हूँ, मैं जानता हूँ वे कब खाती हैं और कब नहीं, मैं जानता हूँ कि वे कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने सारी रात मछली पकड़ी और मुझे यहाँ तक एक छोटी सी मछली भी नहीं मिली। अब यदि आप कहते हैं कि वहाँ पर जाल डाल, मैं जानता हूँ कि वहाँ कोई मछली नहीं है, लेकिन आपके वचन पर प्रभु, मैं जाल को डालने जा रहा हूँ। उसने क्या किया? वो क्रिया में आ गया। आमीन। यहाँ एक तालाब पानी से भरा हुआ है। यदि आपका यीशु के नाम में कभी भी बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो ये समय है कि क्रिया में आ जाएं। यदि आप बस एक कलीसिया के सदस्य हैं और बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा, तो ये समय है कि क्रिया में आ जाएं। ठीक है, अपने मुख को आदर में ढाक लें, अपने पैरों को नम्रता में ढाक लें और अपने घुटनों को झुकाएं और क्रिया में आ जाएं। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते, तो क्रिया में आ जाएं। जब वो अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता था, जब यीशु उससे बोला और कुछ मिट्टी पर थूक कर और इसे उसकी आंखों पर लगाया और उसे चंगा कर दिया, जब उसने ऐसा किया तो वो क्रिया में आ गया। उसने उसकी प्रतिष्ठा को फैला दिया, उसने बात को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भाई उसने उसकी प्रतिष्ठा को लगभग सारे क्षेत्रों में फैला दिया। उसने क्या किया, वो क्रिया में आ गया। एक बार एक अंधा व्यक्ति चंगा हुआ, कहा यह मनुष्य एक पापी है, यहाँ तक कि तुम उसे जानते भी नहीं। उसने कहा चाहे यह पापी हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन यह एक चीज मैं जानता हूँ कि एक समय में अंधा था, अब मैं देखता हूँ। उसने क्या किया, वो क्रिया में आ गया। कलीसिया को इसी चीज की आवश्यकता है, क्रिया में आ जाओ। हमारे पास बहुत अधिक दिखावा है, हमारे पास बहुत अधिक संसार की प्रतिष्ठा है, हमें क्रिया में आने की आवश्यकता है। आमीन। उसने उसकी प्रसिद्धि को देश विदेश में चारों ओर फैला दिया। पेंटिकॉस्ट पर वे लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, उनमें से कुछ अपने खुद के नाम के हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, वे डरे हुए थे और वे ऊपर के कमरे में थे। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, वे उसके वचन का पालन करते हुए वहाँ ऊपर चले गए, उन्होंने उसका वचन लिया। ओह, यदि आज लोग केवल उसका वचन लेते हैं तो वे क्रिया में आ जाएंगे। यरूशलेम नगर में ठहरे रहो, लूका 24:49, इसके बाद तुम प्रतिज्ञा को पाओगे, वो पवित्र आत्मा, इसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों के काम 1:8, लूका 24:49 में कहा, देखो मैं पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूँ, लेकिन यरूशलेम के नगर में रुके रहो जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ के साथ न भर जाओ। कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 4 महीने, 6 महीने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक, यह कितना समय है? बस जब तक, जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो ठीक, तब तक बने रहें, जब तक। आमीन। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तब तक बने रहो। कब तक? जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इसे दावा करें, इसे विश्वास करें, उसे पकड़े रहो, क्रिया में आ जाओ, इसके बारे में गवाही दें, महिमा, जी हाँ, उसकी गवाही दो, डरो नहीं, क्रिया में आ जाओ। वे ऊपर के कमरे में थे, क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति और धन्य कह रहे थे। किस लिए? प्रतिज्ञा। वे ये जानते थे कि इसे आना ही था, आप वहाँ हैं, क्रिया में आ जाएं, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, जब तक प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए, आपके पास प्रतिज्ञा है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है तो क्रिया में बने रहें। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो आपको अब बुलाने वाला है और आप उसको पकड़े हुए हैं तो क्रिया में बने रहें। आमीन। क्रिया में बने रहें। आपके पास 2 पंख हैं, उनका प्रयोग करें, क्रिया में बने रहें, पंखों को आगे पीछे हिलाएं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और आप बस ऐसे ही शोर नहीं मचा सकते, पवित्र पवित्र पवित्र, आपको कहना होगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, क्रिया में बने रहें। आमीन। वे क्रिया में बने रहे जब तक वहां स्वर्ग से आंधी के से शब्द की आवाज नहीं आई, तब वहां वे वास्तव में एक क्रिया में आ गए, तब वे क्रिया में आ गए। भाइयों बहनों, हमने इस अंतिम युग में जो भी घटित होते देखा है, इसे हमारे अंदर क्रिया में आना चाहिए। आमीन। हमें क्रिया में होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। हम चारों ओर ऐसे बैठते हैं जैसे कि यह कुछ तो है, और ठीक है, लोग चारों ओर ऐसे बैठे रहते हैं, पेंटिकॉस्टल लोग, प्रभु कुछ तो करेगा, वे कहते हैं यह बहुत अच्छा है, ओ प्रभु यह उस शराब जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता जो परमेश्वर के निकट रहता है, यह सही है, एक संदेशवाहक जो परमेश्वर के और भी निकट होता है। आप पीतल की वेदी के पार होकर उसके बच्चे बन जाते हैं, वे शराब पीतल की वेदी के पास होते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री के रूप में ठीक परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं। आपको किसी भी याजक और इन सारी चीजों में से होकर नहीं जाना है, वो आपका याजक है, देखा, उसके पुत्रों और पुत्रियों के रूप में ठीक वहाँ उसकी उपस्थिति में होते हैं। भाई मैं विश्वास करता हूँ, हमारे पास 2 पंखों से कुछ अधिक है। आमीन। हमारे पास पवित्र आत्मा है, ये सही है, लेकिन हमें आदर और नम्रता के साथ क्रिया में आना होगा, न ही ऐसी क्रिया में कि किसी पर किसी चीज को थोपने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे आदर और नम्रता के साथ जिससे कि हम क्रिया में आकर कह सकें, हाय हम पर, हमने स्वर शक्तिमान की उपस्थिति को देख लिया है, हमने दर्शन को घटित होते देखा है, ठीक जो उसने कहा, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे बढ़कर करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। जितना कभी लिखा था उससे हमने कहीं अधिक घटित होते देखा है, और क्यों? हमने एक सभा में और अधिक घटित होते हुए देखा, उन चीजों के साथ जो बाइबल में लिखा था, सही है, जितना उसके जीवन के 35.5 वर्षों में लिखा गया उससे अधिक एक ही सभा में देखा है, यह सही बात है। इस पर सोचिए, हमने इसे अपनी आँखों से देखा, हमने इसे घटित होते देखा, हमने इसे पहले से बताते हुए देखा जो पूरा हुआ, इस पर ध्यान दें, लंगड़े, अंधे, लंगड़ाते हुए, मुरझाए हुए, ये चीजें पहले बताई गई, जो कि बिल्कुल ठीक वहीं पर वैसे ही घटित हुई, कभी असफल नहीं हुआ। भाई, यह बात हमें नम्रता और आदर सहित क्रिया में डाल देना चाहिए। वहाँ पीछे बाइबल के समय में जब आग का खंभा इज़राइल के ऊपर था और ये देदारी बना था और हमारे बीच डेरा किया, मैं परमेश्वर से आया हूँ और वापस परमेश्वर के पास जाता हूँ। संत पौलुस ने उसे देखा और अपने मुंह के बल गिर पड़ा। एक पौलुस जैसा महान शिक्षक जिसने गमलीएल के नीचे शिक्षा प्राप्त की, धूल में पड़ा हुआ और चिल्लाता है, प्रभु प्रभु तू कौन है? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक महान मनुष्य, वो क्या था? एक विद्वान, और उसने अपने को नम्र किया क्योंकि उसने आग का खंभा देखा था। क्या हम इसे अपने बीच में अपनी आंखों से चलते फिरते नहीं देखते? लेकिन हमने इसे वैज्ञानिक रूप से भी लिया है। इस बात से हमें क्रिया में आ जाना चाहिए। हम इसे उन्हीं चीजों को करते देखते हैं जो इसने वहाँ पहले की थी, वो आज भी उन्हें करता है। पिता की प्रतिज्ञा। ओह, यह क्या है? यह वचन को प्रमाणित करने आता है ताकि साबित करे कि वचन ऐसा ही है। इस बात से कलीसिया को क्रिया में आ जाना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? दो पंखों से उसने अपने मुख को आदर में ढाक लिया है। उसने नम्रता में दो पंखों से अपने पैरों को ढाक लिया और दो पंखों के साथ वो कार्य करने को चला गया। उसने जाकर इसे क्रिया में लगा दिया। अब हमें वचन के आदर में क्रिया में आना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए। उसके आगमन का चिन्ह प्रकट हो रहा है हर जगह। हम देखते हैं कि यह वचन के अनुसार पूरा हो रहा है। हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा आकर हमें बताता है, कुछ चीजें घटित होने को तय हैं। 20 वर्ष से अधिक नहीं हुए, ठीक इसी इमारत से इसने राष्ट्रपति कैनेडी के आने के बारे में बताया। बिल्कुल ठीक ठीक ये बताया गया कि क्या घटित होगा, कि स्त्रियां और इत्यादि इस व्यक्ति को चुनकर लाएंगे और वास्तव में वो क्या होगा। और समय निकलते हमने इसे जाना और बिल्कुल ठीक ये बताया कि क्या घटित होगा। और आज ये यहाँ पर है और यहाँ वह अधिवेशन होने जा रहा है। कलीसिया का संघ और सभी इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? यह बात हमें क्रिया में डाल देना चाहिए। यह सही है। शब्द दर शब्द जैसा उसने बोला, यह ठीक हमारे सामने पूरा हुआ। ये बात हमें क्रिया में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भविष्यवक्ता के समान हमने इसके परिणाम को देखा है या लोगों को दूर जाते हुए देखा है। वे इनकार करते हैं, संप्रदायों को ऊंचा उठाते हैं, अपने स्थान से गिरते हैं। जैसे यशायाह वहाँ खड़ा था, वो आरंभ से ही एक सांप्रदायिक व्यक्ति था। वो राजा के सहारे पर निर्भर था क्योंकि वो एक भला मनुष्य था, लेकिन उसने देखा कि स्वयं को ऊंचा उठाने की वजह से उसके साथ क्या हुआ। इस बात ने उसे हमेशा के लिए वहाँ से हटा दिया। और हमने देखा है संप्रदाय का स्वयं को ऊंचा उठाने से कलीसिया के साथ क्या हुआ। इसने नाम की कहलाने वाली सांप्रदायिक कलीसिया को लेकर घेरे से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। मुझे एक भी ऐसा बताएं जो गिरने के बाद कभी कोई ऊपर उठा हो। यह कहां पर है? इतिहास में से होते हुए देखें और देखिए, जब भी कोई कलीसिया कभी गिरी, जैसे ही यह संस्थागत हुई वो गिर गई और वो फिर कभी वापस नहीं आई। उजियाह कभी भी मंदिर में वापस नहीं आया। वो अपने जीवन के बाकी दिनों में एक कोड़ी रहा और एक कोड़ी ही गाड़ा गया। जी हाँ श्रीमान, अब भविष्यवक्ता ने देखा इससे क्या हुआ। उसने देखा कि ऊंचा उठाने ने क्या किया। क्या हम लगभग सभी, कोई भी हमारे संप्रदायों में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक परीक्षण नहीं दिया जाता है कि देखें उसकी बुद्धि क्षमता सही है या नहीं। उसके पास DDD PhD होनी चाहिए इससे पहले कि वह हमसे बात करने को आए। हमारा बोर्ड उसे नहीं लेगा यदि उसके पास बुद्धि क्षमता नहीं है। ओह प्रभु, देश की सबसे अच्छी जनता आती है। उन कारों की ओर देखें जो हमारे स्थानों के आसपास खड़ी होती हैं। वे कैडिलैक और रिकन बैकरस और इत्यादि कारें हैं। हमने उस चीज को मरते हुए देखा है। हम इसे मरा हुआ देखते हैं और सारी चीज दोष से भरी हुई बन चुकी है। थोपे हुए घाव, मेरा मतलब सड़े हुए घाव, जैसा कि बाइबल इसे कहती है। कुल मिलाकर यह सब घाव है, इससे बदबू आ रही है। यह सही है, आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ। देखा, हम उनकी पकड़ को परमेश्वर के वचन पर ढीला होते हुए देखते हैं और मत सिद्धांतों को ऊंचा करते हैं। हम इसे क्या करते हुए देखते हैं? इसे कोड़ लगा हुआ देखते हैं, अविश्वास। ओह प्रभु, जैसा कि उजियाह ने उसके अभिषिक्त का स्थान लेने की कोशिश की, उस अभिषिक्त के कार्य स्थल को, जब उसको यह रोग आ गया और उसने पाया कि उसने इसे असफल कर दिया। और हमने देखा है कि इन कलीसियाओं ने अभिषिक्त कार्य स्थल को लेने की कोशिश की कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करे और उसके साथ भ्रमित हो जाते हैं वे नहीं जानते कि क्या करें, उनके सामने वचन को रखें, वे नहीं जानते कि क्या करें, ये सब कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यह किसी और दिन के लिए था, यह क्या है? वे लोग उलझन में हैं, आप कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त कार्यस्थल में बने रहकर और उसके अभिषिक्त वचन का इंकार कर सकते हैं, जो कि स्वयं वचन के रूप में है, आप कैसे वचन के सही होने का इंकार कर सकते हैं और फिर भी यही कहते कि आप आत्मा से अभिषिक्त हैं? केवल एक ही चीज है जो परमेश्वर के वचन को प्रकट करेगी, ये स्वयं पवित्र आत्मा है। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो वह मेरी इन बातों को लेकर और उन्हें तुम्हें दिखाएगा। सही है, आप भला कैसे एक अभिषिक्त कार्यस्थल को ले सकते हैं और एक मत सिद्धांत से या संप्रदाय से संबंध रख सकते हैं? वे मरे हुए हैं, करने के लिए जो चीज है कि गिरकर और चिल्ला उठें, प्रभु परमेश्वर मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। जी हाँ श्रीमान, वे संप्रदाय पवित्र कलीसिया के स्थान को लेने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान में जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता है और यीशु मसीह उसके पुत्र में विश्वास करते हैं, हम पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया में और इन भिन्न भिन्न चीजों में विश्वास करते हैं, हम संतों के प्रभु भोज में विश्वास करते हैं, मैं मसीह के प्रभु भोज में विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं विश्वास करता हूँ, वे संत महिमा में है निश्चय ही, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हमारे पास परमेश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक ही बिचवाई है। जी हाँ श्रीमान, इन चीजों को जांचना चाहते हो, यहाँ पर बाइबल इसका विरोध करती है, वे कहते हैं ठीक है यही बाइबल है, यही परमेश्वर है, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी बना और हमारे बीच डेरा किया, अब वचन हमारी देह में है, अपने आप को प्रकट बना रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त है, क्रिया में आने का समय है, यह सही बात है। दर्शन का भविष्यता पर प्रभाव, ओ प्रभु इस बात को अंगीकार करने को लगाया कि वो एक पापी था, अभिषिक्त भविष्यता, उसने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मैं स्वयं में अशुद्ध हूँ, वो एक पापी था, उसने अपने पापों को अंगीकार किया। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के एक भविष्यता को यह अंगीकार करने का कारण बना कि वह एक पापी था, यही है जो दर्शन ने किया। कुछ डीडीडी पीएचडी इस पर हंसेंगे जो शायद किसी कलीसिया के किसी पद से संबंधित होगा। क्या आपने सुना कि कार्डिनल ने आज के समाचार प्रसारण में क्या कहा? उसने कहा यहाँ कुछ हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि प्रभु जल्द ही वापस आ रहा है। उसने कहा निश्चय ही हमें इस झुंड से छुटकारा पाना होगा, हम एक संगठित विश्व धर्म को चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, आप लोग अब आप सो मत जाना, यह बात आपके सोचने से भी अधिक निकट है, यह व्यक्ति लगभग वैसा ही है, वो एक जो यूसुफ को नहीं जानता, आपको पता है, और ध्यान दें, ये बड़ी चालाकी से आता है, जितनी चालाकी से वो आ सकता है, उन्होंने अंतिम स्थान पर यहाँ अपनी पकड़ को बना ली है, जहाँ वे इसकी एक मूरत तैयार करेंगे कलीसिया के संघ को लेने के द्वारा और इसे वैसे ही बोलने को लगाएंगे, ठीक जैसे पशु ने बोला, और उसे सामर्थ्य दी जाएगी कि सारे धर्मी लोगों को सताए और परमेश्वर के समय और व्यवस्था को बदल देगा, बिल्कुल वैसे ही जो इसने कहा। देखा, हम इसे बाद में ले लेंगे, आज रात बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम आप इसे किसी भी तरह से जानते हैं। जी हाँ श्रीमान, यह उसका कारण हुआ, उसका कारण हुआ, उसने स्वयं को पापी स्वीकार किया। आप क्या कहेंगे, क्यों यदि वहाँ आज नाम का कहलाने वाला होता तो वे कहते अच्छा मैं डॉक्टर फलाना और फलाना हूँ। मैंने सुना है कि एक बिशप कहता है जब मैं स्वर्ग को जाऊँगा आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा, कहा मैं यीशु के पास जाकर और कहूँगा आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं बिशप फलाना और फलाना हूँ, वो कहता है हाँ मैंने सुना है, मेरी माँ आपके विषय में बात करती है। कहा वो लोग जो बाइबल पर विश्वास करते हैं ये ऐसे हैं जैसे कीचड़ के गंदे पानी में से होकर चलना, आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचें, वो मेरा मार्गदर्शक है, मैं कल रात इस पर प्रचार करने जा रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, वो आपका पूरी तरह कीचड़ के पानी में से होते हुए मार्गदर्शक करेगा, जिसमें से होकर निकलना है, सारे खतरनाक उथल पुथल स्थान और सारे ऊंचे स्थानों में और निचले स्थानों में, ये जहाँ कहीं भी है, वो मेरा मृत्यु की नदी में भी मार्गदर्शन करेगा। आमीन। ओह जी हाँ श्रीमान, वो मार्गदर्शन करेगा, जब मृत्यु आती है तो मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जी हाँ, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में से भी होकर निकलूं, तो भी मैं किसी बुराई से ना डरूंगा, तू वहाँ भी है, देखा, यदि मैं अधोलोक पर अपना बिस्तर बनाऊं, दाऊद कहता है वो वहाँ भी है, आमीन। ओह, यदि मैं भोर के पंखों को लगाकर उड़ जाऊं, तो वह वहाँ है, वो हमेशा ही मेरे सम्मुख रहता है, इसलिए मैं न डिगूंगा, आमीन। ओ प्रभु, उन पंखों को ले और अब क्रिया में आ जाएं। जी हाँ श्रीमान, यह भविष्यवक्ता भी तुरंत क्रिया में आ गया। वह अपने घुटनों पर आ गया और उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। तब जैसे ही उसने अंगीकार किया, तब शुद्धिकरण आता है। पहले आपको अंगीकार करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, जब यह भविष्यवक्ता, इस पर सोचिए, एक व्यक्ति जो संघ वाली सरकार के साथ खड़ा है, एक प्रमाणित भविष्यवक्ता, और जैसे ही उसने उस पहले दर्शन को देखा, इससे पहले उसने दर्शन नहीं देखा था, अन्यथा वो यह कर लेता, उसने परमेश्वर की अगुवाई को महसूस किया और वचनानुसार चला गया था। लेकिन इस बार एक खुला दर्शन था और वो चिल्लाया, मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और ये सारे लोग अशुद्ध हैं, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखता हूँ। और हम बस इसकी ओर देखते हैं, हमें उड़ जाना चाहिए, समझे समझे। मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। वह वेदी पर चला गया और उसने कहा, प्रभु मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ठीक यहाँ प्रकट होते हुए देखा है। मैं एक दूत को चीज को हिलाते हुए देखता हूँ, मैंने उसे बोलते हुए देखा और वहाँ कुछ तो पीछे हलचल हुई, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आप सो नहीं रहे हैं। ओहो प्रभु, बोला और कुछ तो घटित हुआ, महिमा हो। क्या हुआ? तब हम पाते हैं उसने अपना पाप अंगीकार किया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, यह तेज आवाज जो बोल रही थी उड़कर नीचे उतर आई, उसका हाथ पकड़ा, चिमटा लिया, एक कोयला उठाया, अपनी हथेली पर रखा, आकर यशाया के होठों पर इसे रख दिया और उसे शुद्ध कर दिया। ध्यान दें, उसने उसे कभी भी PhD की डिग्री लेने नहीं भेजा, उसने उसे कभी भी नियमों की पुस्तक याद करने के लिए नहीं दी, लेकिन वो परमेश्वर भविष्यवक्ता को दर्शा रहा था कि उसकी पवित्र करने की सामर्थ वेदी की अग्नि के द्वारा है, आमीन। आज परमेश्वर की पवित्र करने की सामर्थ ना ही मत सिद्धांत की चर्चा करना या एक कलीसिया की सदस्यता लेना नहीं है, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है और वो आग जो उतर कर नीचे आती है और एक मनुष्य को उसके सारे अविश्वास से शुद्ध करती है, आमीन। परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता को शुद्ध करने का तरीका आग के द्वारा होता है, ना कि संस्था के द्वारा। एक भविष्यवक्ता एक संस्था के विषय में क्या जानेगा, वो परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने जा रहा है, वचन उसके द्वारा प्रकट होने जा रहा था, इसलिए वो उसे एक संस्था नहीं दे सकता था, वो उसी संस्था को पकड़े रहेगा। इसलिए उसने वेदी पर से आग ली और भविष्यवक्ता को पवित्र कर दिया। पहले अंगीकार करना, फिर आग के द्वारा शुद्धता, परमेश्वर की महिमा हो। ओह, ध्यान देना, अंगीकार पहला, शुद्ध होना दूसरा, कार्य आदेश तीसरा, आमीन। आप वहाँ पर हैं, पहला अंगीकार करना है, मैं गलत हूँ, दूसरा शुद्ध होना, धर्मीकरण, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जी हाँ श्रीमान, अंगीकार, शुद्ध होना, कार्य आदेश। तुम सारे संसार में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, वे जो विश्वास करते हैं उनके यह चिन्ह होंगे, आमीन। अंगीकार करने के पश्चात शुद्धता आती है, शुद्धता के बाद कार्य आदेश आता है, सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, लोग क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं। अंत में यह छोटा सा बहुमूल्य भविष्यवक्ता सतावट के नीचे मर गया, आरी से टुकड़े टुकड़े होकर मारा गया। याद रखें, यह तब हुआ था जब यशाया ने उसके अंगीकार को किया कि वो गलत था, वो पूरी तरह से गलत था, वह अपने मत सिद्धांत के सहारे पर निर्भर था। देखो, उस मनुष्य के सहारे पर निर्भर था, एक मनुष्य के बनाए हुए काम। उसने एक राजा को देखा था जो कि एक महान मनुष्य था, वो एक धार्मिक मनुष्य था, लेकिन उसने देखा कि सब मनुष्य असफल हो जाएंगे, समझे। लेकिन जब उसने इसे बदल दिया और यहाँ ऊपर की ओर देखा और एक दर्शन देखा, परमेश्वर कौन था, तब उसने कहा, मैं अंगीकार करना चाहता हूँ, मैं गलत हूँ। वे पुरानी संस्थाएं अब और अधिक काम नहीं करेंगे क्योंकि वे मर चुके हैं और असफल हो गए, समझे, उन पर कोड आ चुका है, लेकिन मैंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते देखा है। एक संस्था इसे प्रकट नहीं कर सकती है, एक संस्था इस तरह से नहीं कह सकती है, एक संस्था इस तरह से इसे नहीं कर सकती है, इसे इस तरह से करने के लिए मसीह की आवश्यकता होती है। और जैसे ही उसने ये देखा, उसने कहा, अब प्रभु मैं पूरी तरह से गलत हूँ। और उसके बाद शुद्ध करना आता है, उसके बाद कार्य आदेश आता है। ओह प्रभु, यह तब हुआ जब शुद्ध किया गया यशाया, जब परमेश्वर ने पुकार कर कहा, मेरे लिए कौन जाएगा? और यह यशाया था जिसने कहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। शुद्ध किया गया भविष्यवक्ता। ओह, क्या आप प्रभाव को नहीं देखते? मार्थेला के प्रभाव को नहीं लेना। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा यहाँ पर कोई नाम नहीं है। उनके नामों के प्रभाव को ना लें, या किसी छोटी लड़की का जो आपके साथ हाई स्कूल में जाती है, या साधारण से विद्यालय में, या आपके पड़ोस में है जो अपने बाल काटती है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, उसके प्रभाव को मत लेना। किसी संस्थापक पास्टर के प्रभाव में ना आए जो परमेश्वर के वचन को इंकार करता है और आपको मत सिद्धांत देता है, उसके प्रभाव को मत लेना। लेकिन तब तक खड़े रहें जब तक परमेश्वर की महिमा को आप पर उतरते हुए ना देख लें। किसी चीज को उसके प्रभाव के द्वारा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसे वैसे ही घटित होते हुए देखते हैं जैसे परमेश्वर ने इसे कहा है। तब चिल्ला उठें, हाय मुझ पर प्रभु, मैं गलत था, प्रभु अब मुझे शुद्ध करें, मुझे शुद्ध करें। जीवित परमेश्वर का आत्मा मुझ पर ताजगी से उतरे। जब कोयले की आग ने भविष्यवक्ता को छुआ, उसको इतना शुद्ध कर दिया जितना वो शुद्ध हो सकता था। तब परमेश्वर की आवाज ने कहा, कौन हमारे लिए जाएगा? तब उसने उत्तर दिया, स्वामी मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो तैयार था, उसने कुछ तो देखा था। जी हाँ श्रीमान, लाखों अब पाप और लज्जा में मर रहे हैं। उनकी दुखित और शोक की पुकार को सुने। जल्दी करें भाई, उन्हें छुड़ाने के लिए जल्दी करें। तुरंत ही उत्तर दो, स्वामी मैं यहाँ हूँ। कुछ तो किया जाना ही है, यह आपके सोचने से भी अधिक देर हो जाती है। होने पाए परमेश्वर का दर्शन लोगों पर इतना प्रभाव डाले कि वे भी उसी परमेश्वर को देख सकें जो यशाया के साथ मंदिर में था। वही परमेश्वर आज अपने पवित्र स्थान में है। वो पवित्र आत्मा के पवित्र स्थान में है। वो पवित्र आत्मा है। एक समय वह शरीर था, वो वह आत्मा है। अपने लोगों के बीच में चल फिर रहा है, अपने आप को जीवित दिखा रहा है, ना ही मरे हुए मत सिद्धांत, लेकिन एक जीवित मसीह जो कल आज और युगानुयुग एक सा है। और यशाया, तुरंत उत्तर दो, स्वामी यहाँ मुझे भेज। आइए हम प्रार्थना करें अपने सिरों को झुकाकर।
Making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me
together.
Speak my Lord, speak my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
अब हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो सकता है वो वह महिला हो जो आपके साथ काम करती है, वो पुरुष जिसके साथ आप काम करते हैं, लेकिन वे हैं।
Millions now in sin and shame are dying. And creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak.
मैंने प्रभु से एक दर्शन को पाया, मैंने इसे होते हुए देखा। अब वो पहले ही बोल चुका है। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ आज रात्रि मैं सोचता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आते हुए मैं कुछ अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि आपकी सहायता करेगा। आपने उस भविष्यवक्ता को देखा, वो एक महान व्यक्ति था। उसका जन्म भविष्यवक्ता होने के नाते एक उद्देश्य के लिए हुआ। उसने पाया कि उसने गलत रास्ते को लिया था। वो एक राजा उज्जियाह के हाथों के सहारे पर निर्भर था। उसने देखा, आप मांस के हाथों का सहारा नहीं ले सकते, यह नाशवान है, यह गलत है। लेकिन ऊंचाई पर देखें और देखें, परमेश्वर ऊंचे पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ ऊंचे पर यीशु की ओर देखें। उसने कहा, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूँ। उसे आपको आत्मा में ऊपर उठाने दो। ध्यान दें और ये देखें कि वो कल, आज एक सा है कि नहीं। तब उस छोटे से यशाया ने परमेश्वर के दर्शन को नीचे आते देखा। उस मंदिर में वो अपनी गलतियों को अंगीकार करने के लिए तैयार था। वो अंगीकार करने के लिए तैयार था कि उसने कुछ भी सही नहीं किया था। तब क्या वो राष्ट्रों में जाने लगा? क्या तब उसने हर चीज को किया जो सही थी, हर चीज जो वो कर सकता था? अंत में उसने उसकी गवाही को उसके लहू से मुहर बंद कर दिया। मैं सोचता हूँ हम सभी की यही भावना होगी। कितने ये महसूस करते हैं कि आप यह कहना पसंद करेंगे, सुनो परमेश्वर कहता है। क्या आप पसंद करेंगे? आप परमेश्वर से कहेंगे, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अपने हाथ उठाएं, मैं यहाँ हूँ, मुझे दूध वाले को गवाही देना है। मैं किसी को भी गवाही दूंगा जिसे मैं दे सकता हूँ। कुछ तो करें, मुझे कुछ तो करने दें। प्रभु, मैं प्रचारक बनने के लिए नहीं मांगता हूँ, मैं यह होने के लिए नहीं मांगता हूँ। लेकिन प्रभु, यदि मैं एक किसान हूँ, मुझे एक ऐसा किसान बनाए जिससे पड़ोस के किसान को गवाही दे सकूँ। मुझे एक किसान होने दे कि जब मैं अपने अनाज को बेचूँ तो अनाज के संचालक को गवाही दे सकूँ। मुझे एक किसान होने दो। यदि मैं एक महिला हूँ तो मुझे बीमे वाले को गवाही देने दो। मुझे दूध वाले को गवाही देने दो, अखबार वाले लड़के को। प्रभु, मुझे कुछ तो करने दो। मुझे पड़ोस में जाकर और अपनी बहन से समर्थन को पाने दो, यहाँ जो पड़ोस में रहती है, भले ही वो बुरी और गलत है। मुझे मधुरता से अपनी गवाही देने दो। मुझे अपने मुख को नम्रता के पंखों से ढाकने दो। मुझे भी इसी प्रकार से अपने पैरों को ढाकने दो। आपकी उपस्थिति में मुझे आदर भाव से होने दो। लेकिन दो और पंखों के साथ मुझे भेजें। प्रभु, तुरंत किसी के पास, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज। इस संबंध में आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करें। सर्वशक्तिमान यहाँ पर है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? हम उसकी दिव्य उपस्थिति में हैं। अब इस बात को ना भूलें, उसकी उपस्थिति ठीक यहाँ पर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये थी। स्पष्ट रूप से जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा कि चार या पांच दर्शन पहले ही हो चुके हैं। यह सही है, यह सही है। यहाँ पर दो या तीन अधिक लोग रहे हैं जो कि यहाँ कलीसिया से संबंधित हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल वैसे ही है, तो ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? आप में से प्रत्येक अपने अपने तरीके से आइए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। ये सही बात है, क्या ये सही है?
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation.
वो अब एक राष्ट्र है।
The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors and cumbered.
आप देख रहे हैं, ये सामने आ रहा है, न ही केवल राष्ट्र लेकिन कलीसियाएं भी।
Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with his spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. You know they are.
Amen.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
उस सांप्रदायिक धुएं को साफ कर दो सांसारिक गंदगी को साफ कर दो। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। ऊपर देखो, अपने उजाले को चमकने दो, उन पंखों को लें और तुरंत ही किसी के पास उड़ जाएं। आइए अब अपने हाथों को उठाकर और कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। स्वर्गीय पिता, प्रभु मैं इस कलीसिया के साथ आज रात अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ। इस सख्त कड़क संदेश के बाद प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु यहाँ मेरी कलीसिया है। होने पाए कि वे उनका मुख आदर के साथ ढाप लें, होने पाए कि वे उनके पैरों को नम्रता से ढाप लें, होने पाए कि उनके पास संदेश के साथ उड़ने के लिए साहस हो। जल्दी ही किसी और के लिए प्रभु इसे प्रदान करें। होने पाए कि वे मधुरता के साथ गवाही को दें, वे धरती के नमक बने इसके उद्धारकर्ता के साथ। प्रभु परमेश्वर, यह हमारा बलिदान है, यह हमारी भेंट है, यह हमारा धन्यवाद देना है। प्रभु हम इसी की लालसा रखते हैं। आज रात हमें भेज किसी के पास जो भटका हुआ हो। होने पाए आने वाले कल में हम उन्हें कहीं तो कलीसिया में खींच लाएं। होने पाए कि हम उन्हें प्रभु के मार्ग की शिक्षा दें। होने पाए कि वे बचाए जाएं प्रभु, क्योंकि यह हमारे सोचने से भी अधिक देर हो गई है। प्रभु इसे प्रदान करें। होने पाए हमारे हृदय में इसका यही अर्थ हो जैसा कि हम इसे बोलते हैं। प्रभु कलवरी की वेदी पर से पवित्र आत्मा के अग्नि के कोयले को लें। आज रात प्रत्येक हृदय और होठों को छू लें प्रभु, कि हम झूठ न बोलें, कि हम सत्य को बोलें। प्रभु आज रात हमें स्वीकार करें, हम जैसे भी हैं। हम सब प्रचारक नहीं हैं, हम सब भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम सब अन्य जुबानों में बोलने वाले नहीं हैं, हम सब आश्चर्य कर्म करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सबके पास करने के लिए कुछ तो है। प्रभु हमें दिखाएं कि यह कहां पर है। गवाही देना, गीत गाना या प्रार्थना करना, और जैसे पानी के ऊपर रोटी होती है, किसी महिमामय दिन में यह वापस लौट कर आएगा। इसे प्रदान करें प्रभु, हम यहाँ हैं। हमें हमारे पड़ोसियों के पास भेजें, जहाँ कहीं भी हम जा सकते हैं, हमारे साथी लोगों के लिए, और हम उन्हें प्रभु के आगमन के बारे में बताएं। पिता इसे प्रदान करें। अब हमें आशीषित करें। होने पाए आज रात हमें हमारे शरीरों में विश्राम मिल सके। होने पाए कि सुबह हम उठकर कलीसिया में आ सकें, और होने पाए कि कल आप इतने सामर्थी रूप से बोलें कि आप एक भी पत्थर को अधूरा नहीं छोड़ें, कि हर एक मनुष्य जान जाए कि इसके अंदर कैसे प्रवेश करना है। प्रभु हमें सिखाएं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह को हमें सिखाएं कि कैसे इस पूरे डीलॉल तक आना है, जहां पर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकें। प्रभु हम आप पर रुके हुए हैं, अग्नि के कोयले के साथ जो हमारे होठों पर रखने के लिए तैयार हैं। हम रुके हुए हैं पिता, यीशु के नाम में। अब अपने झुके हुए सिरों के साथ मैं अब पास्टर से कहूंगा कि सामने आकर सभा को समाप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आपको सुबह देखने की आशा करता हूं। परमेश्वर आपके साथ हो, हमारे बीच में सारे बीमारों को और पीड़ितों को चंगा करे, आप में से प्रत्येक को। मैं ठीक अभी आत्मा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा को महसूस कर रहा हूं। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो यहां पर है। मैं निश्चित हूं कि वो यहां पर है। मैं उसे देखता हूं। मैं जानता हूं कि वो यहां पर है। मैं उसको यहां मंडराते हुए देखता हूं, उस महान अग्नि के खंभे को। महिमा हो उसके अस्तित्व के प्रकटीकरण में, उसके दैविकता की उपस्थिति, उसका महान अस्तित्व। परमेश्वर इस पर मंडराए, इनमें से एक भी नाश न हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो।